चक्षुरून मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीन बन्धो जगत्पते गो कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त। हरे राधे मेरी स्वामिनी मेरा दे को दान जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो Thank you.
Yeah. Raja. Vasudevaya
वासुदेवाय।
पवित्र वित्रासुर के द्वारा जो स्तुति हुई है सर्वप्रथम इनका पाठ करेंगे। सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। अहम हरे तौ पादे कमूलम,
अहम हरे तौ पादे कमूलम,
दासानु दासो भवितास्मि भूय,
दासानु दासो भवितास्मि भूय,
मन स्मरेता सुपते गुणास्ते,
स्मरेता सुपते गुणास्ते,
घृणित्वा ककर्म करो तुकाय,
घृणित्वा कर्म करो तुकाय,
नाकप्रेष्ठम नच पारमेष्ठम,
नाकप्रेष्ठम नच पारमेष्ठम,
न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम,
न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम,
न योगसिद्धिय पुनर्भवम्
समञ्जसत्वाविरह्यकांशे, समञ्जसत्वाविरह्यकांशे,
अजातपक्षा इव मातरं खगा,
अजातपक्षा इव मातरं खगा,
स्तन्यं यथावत् सराशूदार्ता,
तनयं यथावत् सराशूदार्ता,
प्रियं प्रियेव युषितं विषण्णा,
प्रियं प्रियेव युषितं विषण्णा,
मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्षते
विद्रक्षते त्वां,
मामोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं,
मामोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं,
संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः,
संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः,
तन्मायात्मात्मजदारगेहे, श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूया,
श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूया, अहं हरे तौ पादे कमूल,
अहम हरे तव पादे कमूल,
दासानुदासो भवितास्मि भूयः,
दासानुदासो भवितास्मि भूयः,
मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते,
मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते,
गृणीत्वा कर्म करो तुकायः,
गृणीत्वा कर्म करो तुकाय, निन्दन्तं पुलकोत्कलेन विकस, अन्निपप्रसुञ्छवे, प्रोद्विकृत्य भुजा कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्तापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस तृतीय दिवस के तृतीय सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद उपनिषद समस्त शास्त्रों का सार है, वेद व्यास जी इसे निगम कल्प तरोर गलितम फल कहते हैं। जैसे सभी वृक्ष का सार फल होता है, वैसे ही समस्त वेद उपनिषद शास्त्र पुराण ये सब का सार श्रीमद् भागवतम है। जैसे वृक्ष में कई सारे भाग होते हैं, जड़ होता है, मूल होता है, पत्ते होते हैं, डालियां होती हैं, परंतु उस वृक्ष में सबसे मधुर केवल उस वृक्ष में लगा हुआ फल होता है। वैसे ही संसार में वेद शास्त्र उपनिषद अनेक अनेक हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम जो है परम मधुर ग्रंथ है। मधुराति मधुर, जिसे अमृत के साथ तुलना करते हैं, अमृत के समान यह मधुर ग्रंथ है, जिसका आस्वादन करने पर पद पद में एक नए आनंद का अनुभव होता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि जब एकत्रित हुए और सुध गोस्वामी को जिज्ञासा की, कृपया करके हमें भागवत कथा सुनाइए, हम एक दो दिन के लिए नहीं 1,000 वर्ष तक भागवत कथा सुनना चाहते हैं। तब श्री सुध गोस्वामी कहते हैं कि इतनी कथा सुनकर आप थक नहीं जाओगे, आप ऊब नहीं जाओगे, क्योंकि भौतिक संसार की भौतिक वस्तु का नियम है कि आप जितनी वस्तु ज्यादा मात्रा में ग्रहण करते हो उतनी ज्यादा उबन होती है। मान लो यदि किसी को भूख लगी है और भूख लगने पर रसगुल्ला गुलाब जामुन खाता है तो 1 खा सकता है, 2 खा सकता है, 5, 10 या 50 खा सकता है। जरूरत से ज्यादा खाने पर उबन आ जाती है। उसी प्रकार सुध गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनि को कहने लगे कि इतनी सारी कथा सुनकर, इतने देर तक भागवत कथा सुनकर उब नहीं जाओगे। तब 88,000 ऋषि मुनि एक स्वर में कहते हैं, यत शुणुताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हे सुध गोस्वामी, श्रीमद भागवत कथा जो है उसके प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में, प्रत्येक शब्द के पद पद में आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि यह भागवत रसमय ग्रंथ है, परम मधुर रसमय ग्रंथ। श्रीमद भागवत का श्रवण हम सब लोग कर रहे हैं और इस भागवत के अंतर्गत 6 स्कंद में एक बहुत बड़े असुर के द्वारा भगवान को स्तुति हो रही है। असुर का नाम आप सब लोग जानते हैं, वृत्रासुर। विश्वरूप के पिता त्वष्टा के द्वारा यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ। यह असुर पूरे आकाश को वृतांत कर लिया, आकाश को घेर लिया है, इसलिए इनका नाम हुआ वित्रासुर। और प्रकट होकर सभी देवताओं को मारने लगा। भगवान की कृपा से, भगवान के कहने पर इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डी प्राप्त करके उनसे वज्र का निर्माण कराया और वज्र लेकर इंद्र वित्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में आया है। रणभूमि में देवताओं की सेना है, इंद्र समेत सब लोग युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं और यहां पर वित्रासुर अकेला सभी देवताओं को भारी पड़ रहा है। धमाधार युद्ध हुआ, इस युद्ध में हजारों हजारों तलवार भाले बाण इत्यादि छोड़े गए, परंतु वृत्रासुर को कुछ नहीं हुआ। अंत में वृत्रासुर इंद्र के साथ युद्ध करने चला। हम कल श्रवण किए, इंद्र ने अपनी गदा चलाई, वृत्रासुर ने वह गदा पकड़कर इंद्र के ऐरावत के ऊपर फेंकी। ऐरावत मूर्छित, परंतु इंद्र की कृपा से ऐरावत फिर से स्वस्थ हुआ। स्वस्थ होकर इंद्र के हाथ में वज्र है और वृत्रासुर को मारने की तैयारी में है। शास्त्र की अद्भुत घटना, एक असुर रजस्तम स्वभावस्य, जो रजोगुण और तमोगुणी स्वभाव वाला है और जो केवल पाप की प्रवृत्ति में लगा है, ऐसा वृत्रासुर अचानक इंद्र से कहता है, हे इंद्र तुम मुझे मार डालो, आज मुझे मरना है। उस समय वृत्रासुर अपने मन और बुद्धि को पूरा पूरा भगवान में लगा चुका था। यद्यपि असुर है, परंतु फिर भी अपने मन और बुद्धि को वश में करके भगवान के चरणों में लगा दिया है। और वृत्रासुर के द्वारा भगवान को चार श्लोक में अद्भुत प्रार्थना हो रही है। यह प्रार्थना इतनी विशेष है, दूसरे शब्दों में यह भागवत का सार ही है। इसलिए आचार्यगण वृत्रासुर के द्वारा की गई प्रार्थना को चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। अद्भुत प्रार्थना। वृत्रासुर कहते हैं, युद्ध चल रहा है, बाणों के प्रहार चल रहे हैं, और उस बीच रणभूमि में, बीच युद्ध में वृत्रासुर भगवान से कहता है, अहम हरे तव पादेक मूलं दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरे सुपते गुणास्ते गृणित वाक कर्म करो तुकाय। अहम हरे तौ पादेक मूलम। हे प्रभु, हे हरि, भगवान को संबोधन देते हुए वृत्रासुर कहते हैं कि हे हरि, हे ईश्वर, अहम पाद एक मूलम दासानु दासो भवितास्मि भूय। हे प्रभु, हे कृष्ण, यहां वृत्रासुर भगवान श्री कृष्ण को हरि कह रहे हैं। हरि के बारे में मैंने कुछ बताया था कल। हरि का अर्थ होता है हरति इति हरि, और हमारे भगवान हरने में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है। हमारे ब्रज वृंदावन के संत बहुत सुंदर गाते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। हमारे ब्रज वृंदावन में एक अद्भुत चोर आया है। यह अद्भुत चोर क्या करता है? कहते हैं नवनीत चोरम, यह नया नया ताजा माखन चुराता है। केवल मक्खन ही नहीं, गोपांग नानां सिद्धुल कुलपित चोरम, गोपियों के वस्त्र को चुराता है। इतना ही नहीं, इस संसार में हमने बहुत बहुत चोर देखे हैं, धन को लूटने वाले चोर देखे हैं, गहने को लूटने वाले चोर देखे हैं, डायमंड हीरे को लूटने वाले चोर देखे हैं, किसी के घर के टीवी और फ्रिज चुराने वाले चोर देखे हैं। यहां तक जो बड़े बड़े सफेद कपड़े में चोर होते हैं, डॉक्टर के वेश में किसी का किडनी चुराने वाले भी चोर देखे हैं। परंतु हमारे ब्रज वृंदावन में जो चोर आया है, ये चोर तो हृदय ही, हार्ट ही चुरा लेता है। और किसका हृदय चुराया? गाते हैं श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, श्रीमती राधा रानी का हृदय ही चुरा लिया। हम क्या बताएं, ये चोर नहीं, ये तो सभी चोरों का सरदार है, इसलिए इस चोरों के सरदार के चरणों में प्रणाम करते हैं। चोरा के ग्रमणम पुरुषम नमामि। ये चोर की अद्भुत कथा है। यदि कोई व्यक्ति गाते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस चोर की टीम में शामिल हो जाए, ये चोर की बहुत बड़ी टीम है, यदि कोई व्यक्ति ये चोर की टीम में शामिल हो जाए तो फिर वह न तो घर का न तो घाट का, फिर वह घर पे नहीं टिकता। इस चोर की टीम में शामिल होने वाला कभी मंदिर में, कभी कथा में, कभी वृंदावन, कभी मथुरा, तो कभी द्वारका घूमते रहता है। और क्या बताएं, जगत में बहुत बहुत चोर है, परंतु ये चोर का कोई एक बार भी नाम ले लेता है, एक बार भी अपने मुख से ये चोर का नाम ले ले, अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग गमनम पुरुषम नमामि। एक बार भी इनका नाम लेने वाला करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप से मुक्त हो जाता है। अद्भुत चोर है ये, चोर नहीं है तो चोरों का सरदार है, इसके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम। एक भक्त अंत में बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इस संसार के सबसे बड़े चोर हो, क्योंकि हृदय तो कोई नहीं चुरा सकता है, संसार के सबसे बड़े चोर हो, और सब लोग जानते हैं, और जो चोर होते हैं उसे पकड़ने के लिए पुलिस रात दिन पीछा करती है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस रात दिन उसका पीछा करती है, और चोर जो है भागते रहते हैं, और जो चोर होते हैं उसे अंधेरा बहुत प्रिय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, महात्मा भक्त होते हैं, उसे सवेरा बहुत प्रिय होता है, वे राह देखते हैं कब ब्रह्म मुहूर्त हो और भगवान की कब हम पूजा करें, और जो डाकू और चोर होते हैं वे रात की राह देखते हैं कब अंधेरा हो और हम लोग चोरी करें। हे प्रभु, आप चोर हो और आप अंधेरा ढूंढते रहते हो, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे हृदय में अनंत अनंत जन्मों से अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, अनंत अनंत जन्मों से अज्ञान रूपी अंधकार मेरे हृदय में भरा हुआ है, इसलिए आपको छिपने के लिए मेरे हृदय से अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में छिप जाइए। भक्तों के अद्भुत अद्भुत भाव होते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अद्भुत चोर है, चोराग गमनम पुरुषम नमामि। तैसे भगवान को हरि कहा जाता है, वित्रासुर भगवान को हरि कह रहे हैं, और हरि कह के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अहम तव पाद एक मूलम दासानुदासो भवति अस्मि। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपके जो दास हैं, आपके जो भक्त हैं, आपके भक्त के चरण को मैं कभी न छोड़ पाऊं। हे प्रभु, ये अंतिम समय में आपका यह दास आपके चरणों में प्रार्थना करता है, मुझे आपके भक्तों की संगति प्रदान कीजिए। मैं इस संसार में कर्मियों के साथ, पापियों के साथ रह के थक चुका हूं, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, दासानुदासो तव, आपके दासानुदास, आपके भक्त के भक्त का संग प्रदान कीजिए। मैं आपके भक्तों के साथ रहना चाहता हूं, एक भक्त की प्रार्थना है। वित्रासुर प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके भक्त के साथ रहना चाहता हूं। वास्तव में भक्तों का संग करना, भक्त के साथ रहना, ये जीवन में सबसे अच्छा कार्य है, और भक्त के साथ रहने की क्रिया को सत्संग कहा जाता है। यह सत्संग ट्रेन में भी हो सकता है, रास्ते में भी हो सकता है, ऑफिस, घर और मंदिर में भी हो सकता है। किसी भक्त के साथ आप मिलते हो तो उसे सत्संग कहा जाता है, और यदि कोई भक्त नहीं है, अभक्त के साथ मिलते हो तो उसे असत्संग कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में सत्संग की बहुत महिमा बताई गई है। और यहाँ वित्रासुर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अंतिम प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपके भक्तों का संग हो, मेरे जीवन में सत्संग प्राप्त हो। सत्संग प्राप्त होना ये जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो सत्संग को तीर्थ राज प्रयाग के साथ उपमा देते हैं। कहते हैं,
मुद मंगलमय संत समाजो,
मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का जो समागम है, संतों का संग है, ये तीर्थ राज प्रयाग के समान पवित्र है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में जाकर हम स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही भक्त के साथ जब हम मिलते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। संत जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वे गंगा के समान पवित्र होते हैं। जैसे गंगा में स्नान करने पर पवित्रता आ जाती है, वैसे संतों के साथ, भक्तों के साथ मिलने पर पवित्रता आ जाती है। हमारे आचार्य तो यहां तक कहते हैं, गंगा में तो स्नान करने के बाद व्यक्ति पवित्र हो सकता है। यहां से हरिद्वार जाओ, देहरादून पकड़ो और फिर गंगा नदी में श्रद्धा पूर्वक स्नान करोगे तब जाकर पवित्रता आती है। परंतु भक्त का केवल दर्शन कर लो, दर्शन पवित्र करो, यही तो मार्ग है। केवल दर्शन करने मात्र से पवित्र बन जाते हैं। भक्त की महिमा है। वित्रासुर कहते हैं कि ऐसे भक्तों का संग प्रदान कीजिए, मैं आपके भक्तों के साथ रहूं, आपके भक्तों के साथ मेरी संगति हो, कृपया करके मुझ पर ऐसी कृपा की। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। प्रश्न होता है कि भक्तों के साथ संग होने पर क्या होता है। वित्रासुर कह रहे हैं कि मैं आपके भक्तों के साथ रहूं तो रहकर क्या करोगे। तो भगवान कहते हैं, जब आपस में दो भक्त मिलते हैं तब मेरी कथा होती है और उस कथा को सुनकर हृदय में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है। यह सत्य बात है, भक्तों से यदि आप मिलते हो, भक्तों के साथ रहते हो तो जीवन में सुख, शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। और अभक्तों के साथ यदि आप रहोगे तो ईर्ष्या, द्वेष, कॉम्पिटिशन के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन में सबसे पहला कार्य यदि हमें करना है तो वह सत्संग। सत्संग से ही हमारी प्रगति होगी, हम परम गति को प्राप्त होंगे सत्संग से। जीवन का आधार दो वस्तु के ऊपर है, संस्कार और सत्संग। यदि संस्कार न हो और सत्संग न हो तो जीवन ही नरक बन जाता है, पशु के समान यह जीवन हो जाता है। संस्कार और सत्संग की बहुत आवश्यकता है, परंतु संसार में कोई सत्संग करते नहीं। कुछ लोग कहते हैं संतों का संग नहीं करेंगे तो क्या होगा, और कुछ लोग इतने और कॉन्फिडेंस में होते हैं कि ठीक है, हम पापियों के साथ, अभक्त के साथ रहेंगे परंतु उसका असर हम पर नहीं होगा। आप कितना भी सतर्क रहो, आप एक सेकेंड भी यदि कोई अभक्त के साथ बैठ जाते हो तो उसका असर हो ही जाता है। पुराणों में बहुत सुंदर कथा आती है। एक समय की बात, एक जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए गया। सुबह से लेकर शिकार ढूंढ रहा था परंतु शिकार नहीं मिला। दोपहर हो गई, बेचारा थक गया और थक कर एक पेड़ की छांव में सो गया। परंतु उस समय बहुत हवा आ रही थी और हवा आने के कारण सूर्य का प्रकाश बिल्कुल उनके सिर पर आ रहा था। पत्ते हिल रहे थे इसलिए उसके बीच से प्रकाश आ रहा था। बेचारे को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उस समय आकाश में एक हंस उड़ रहा था। हंस ने उड़ते उड़ते देखा कि बेचारा परेशान है। हंस उड़ते उड़ते उस वृक्ष के ऊपर आकर बैठा और अपनी पंख को खोल दिया, जिसकी परछाई में वह शिकारी आराम से सो गया। परंतु उसी समय उस हंस के बाजू में कौवा आकर बैठ गया। जैसे ही वह कौवा बैठा तो आप सब लोग जानते हैं कौवे का स्वभाव। गांधी जी का या नेहरू का कितना भी अच्छा पुतला रास्ते में लगाते हैं परंतु ये कौवे लोग बिगाड़ ही देते हैं, अंत में बिगड़ जाता है। कौवे ने वहां पर मल छोड़ा और मल छोड़ने से वह मल डायरेक्ट शिकारी के मुख पर गिरा। शिकारी जग गया और तुरंत खड़ा हुआ और खड़ा होकर हाथ में धनुष बाण लेकर, शिकारी जब तक खड़ा हो तब तक तो वह कौवा उड़ गया परंतु हंस उसको परछाई देने के लिए बैठा था। शिकारी ने हंस को मार डाला। हंस ने मरते मरते अंतिम में यही पूछा कि मैं तो आपकी रक्षा करने के लिए बैठा था, मैं तो आपको परछाई देने के लिए बैठा था, आपने मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती है, मेरा दोष बताओ। तब शिकारी ने यही कहा कि आप बहुत अच्छे हो, आपके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं और आप मेरी भलाई करने के लिए यहाँ पर बैठे थे परंतु एक मिनट के लिए आपने कौवे का संग कर लिया इसलिए आपको मरना पड़ा। ठीक उसी प्रकार भक्तों, चाहे हमें बहुत हम बहुत अच्छे परिवार से हो, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हो परंतु कुछ मिनटों के लिए भी अभक्तों का संग हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन पतन की ओर चला जाता है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए, असत्य संग से बचना चाहिए। वृत्रासुर कहते हैं कि मैं ऐसे असत्य संग से दूर रहकर केवल आपके भक्तों का संग करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और इतना ही नहीं, मनस्मरेता सुपते गुणास्ते, हे प्रभु हे हरि, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरा मन निरंतर आपकी गुण रूप और लीला का स्मरण करता है। मेरे मन में एकमात्र आपके ही विचार उत्पन्न होता रहे, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। घृणित वाक कर्म करो तुकाय, और हे प्रभु मैं मेरी इंद्रियों से कुछ भी कार्य करूं तो मात्र तुम्हारे लिए कार्य करूं। हे कृष्ण, हे प्रभु, केवल ये हाथ यदि चले तो मात्र आपके लिए चले, ये पांव यदि चले तो मात्र आपके लिए। मैं मेरे जीवन का सारा कार्य सारा कर्म फल आपको अर्पण कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। वास्तव में हमारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना यही इंद्रियों की सार्थकता है। सवाक यात से गुणान गृणीते, हमारी वाणी तब सार्थक बनती है जब इस वाणी से भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान ने इतनी सुंदर वाणी दी है, हमें गुंगा भी नहीं बनाया है, तो इतनी सुंदर वाणी से भगवान के गुणगान करने चाहिए। यदि हम यह सुंदर वाणी से भगवान का गुणगान नहीं करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं यह वह वाणी काल को आमंत्रण करने वाली है। इसलिए इस वाणी से सवा के यात से गुणान गृणीते, इस वाणी से भगवान का गुणगान करना चाहिए। करोच तत्कर्म करो मनुष्य, इस हाथ से भगवान की सेवा करनी चाहिए और मन में भगवान की लीला का स्मरण करना चाहिए और अपने शरीर को अपनी काया को अपने सिर को सदैव भगवान के चरणों में झुकाना चाहिए। इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है और यह मनुष्य देह प्राप्त करके हम हमारा सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकाते हैं, कहते हैं यह सिर काट देने के बराबर है। इसलिए यह सुंदर देह से भगवान की भक्ति करना यही देह की सार्थकता है। वित्रासुर मरते हुए अंतिम क्षण में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आपके भक्तों की संगति प्रदान कीजिए, मैं मन में आपका स्मरण कर सकूं और वाणी से आपका गुणगान कर सकूं, कृपया करके मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। मान लीजिए भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर भगवान ने कहा ठीक है ये आपको दे दिया, और कुछ चाहिए, क्योंकि मैं प्रकट हो चुका हूं, जो चाहिए वो मांग लो, मैं सब कुछ देने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। तब वृत्रासुर कहते हैं
ननाक प्रीष्ठम नच पार में न सार्वभौम नरसाधिपत्यम् न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा वीरयकांशे।
भगवान कहते हैं वृत्रासुर और क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो। तब वृत्रासुर कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वृत्रासुर को भगवान ने कहा वैकुंठ का राजा बना दूं, प्रभु ननाक पृष्ठम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या ब्रह्मलोक का राजा बनना है? नच पारमेष्ठम, प्रभु मुझे ब्रह्मलोक का राजा भी नहीं बनना है। तो क्या स्वर्ग का राजा बनना है? ननाक पृष्ठम, न तो मुझे स्वर्ग का राजा बनना है। तो क्या इस पृथ्वी का राजा बनना है? न सार्वभौमम, मुझे इस पृथ्वी का सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बनना है। तो क्या किसी देश का राजा बनना है? न रसाधिपति, प्रभु न तो किसी देश का राजा बनना है। तो क्या योग सिद्धि क्या चाहिए तुम्हें? न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, मुझे न तो योग चाहिए न सिद्धि चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आपके विरह में तड़प रहा हूं, आपके विरह में दुखी हो रहा हूं। हे प्रभु आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए असुर है परंतु भगवान को कैसी प्रार्थना है। आज का मनुष्य, असुर की बात छोड़ दीजिए, आज का मनुष्य भी ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। भगवान देने के लिए खड़े हैं परंतु भगवान को कह दिया कुछ नहीं चाहिए। यदि हम होते तो प्रभु 10-5 बंगले दे दीजिए, 10-15 गाड़ी दे दीजिए और इतने करोड़ रुपए दे दीजिए, काम हो गए। परंतु भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान को ही मांग लेते हैं। भगवान आप ही चाहिए, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे न तो चक्रवर्ती सम्राट बनना है न राजा बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, न जन्म न धनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये। हे जगदीश, हे जगत के नाथ, न तो मुझे धन चाहिए न जन्म चाहिए न सुंदरी, न मुझे मुक्ति की भी कामना नहीं है। भगवान कपिल देव अपनी माता देवती को उपदेश देते हुए कहते हैं सारूप्य सालोक्य साष्टीम इत्यादि, ऐसी मुक्ति मैं मेरे भक्तों को देता हूं परंतु मेरे भक्त दिए मानम न गृणंती, मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। प्रभु मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप ही चाहिए, हमें आपको प्राप्त करना है। भगवान के भक्त भगवान को छोड़कर किसी से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान को छोड़कर हम कुछ भी मांगेंगे तो केवल दुखी के दुखी ही बने रहेंगे। सुख केवल भगवान के साथ रहने में है। वित्रासुर की प्रार्थना है कि प्रभु मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी कृपा आप चाहिए। केवल वित्रासुर ही नहीं, भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हो गए, ये सभी भक्तों ने भगवान से भगवान को ही मांगा है, बाकी सब ठुकरा दिया। रामायण के प्रसंग में भगवान श्री रामचंद्र जब केवड़ की नाव से उतरे, तब भगवान ने केवड़ को उतराई दी, बहुत सुंदर सोने की अंगूठी दी, कहा केवड़ आपने हमें गंगा को पार कराया है इसलिए आप ये उतराई रख लो। तब जैसे वृत्रासुर यहां पर प्रार्थना करते हैं वैसे वहां केवड़ भगवान श्री रामचंद्र से कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे आपका दर्शन हो गया इसलिए सब कुछ प्राप्त हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत बहुत मनाया केवट ले लीजिए, क्योंकि आपने हमें गंगा पार कराया है, आपने परिश्रम किया है, मेहनत की है। भगवान के बहुत बहुत कहने पर भी केवट ने कुछ नहीं किया। केवट एक ही प्रार्थना करता है, नाथ आज मैं
काहू न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा
दर्शन हो गया, आपका दर्शन दर्शनामृत मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो प्रभु मेरे अनंत अनंत जन्म बीत चुके हैं, मैं आज तक अनंत जन्मों से जो जो मेहनत करते आया हूँ, ये सभी जन्मों की मेहनत का फल है नाथ, मुझे आज मिल गया, आपके दर्शन मिल गया।
बहुत काल में
देना ही है तो आपका अनुग्रह दीजिए, कृपा दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति करता है। भक्त जो होते हैं भगवान से भक्ति मांगते हैं।
अब कछुना चाहिए मोरे कछुनाथन चाहिए मोरे दीन दयाल
आ बहुत कीन प्रभु लगन सिय नहीं कछु फेवटले
बहुत कीन प्रभु लगन सिय नहीं कछु फेवटले
बहुत कीन प्रभु लगन
विमल कर दे
आपका दर्शन हो गया, मैंने आज सब कुछ प्राप्त कर लिया। ठीक उसी प्रकार वित्रासुर कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए और आपके विरह में मैं इतना तड़प रहा हूं, इतना तड़प रहा हूं। मान लीजिए भगवान ने पूछा कितना तड़प रहे हैं, हे वित्रासुर आप मेरा दर्शन करने के लिए कितना तड़प रहे हैं, तो वित्रासुर अपनी प्रार्थना में तीसरा श्लोक कहते हैं
अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत्
मनोरविन्दाक्ष दीद्रक्षते त्वाम।
हे प्रभु, जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे नया ताजा जन्मा हुआ एक पक्षी का बालक, जो अजात पक्षा जिसकी पंख नहीं है, पक्षी जब जन्म लेता है तो शुरू शुरू में उनकी पंख नहीं होती, तो बिना पंख का वो पक्षी का बालक के माँ और बाप उनके लिए भोजन जुटाने के लिए जंगल में जाते हैं, अपने उस घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं, परंतु सुबह से शाम हो जाती है फिर भी उनके माता पिता नहीं आते हैं, तब यह नया ताजा जन्मा हुआ पक्षी जिसकी पंख नहीं होती है बेचारा उड़ नहीं सकता है, वह भूखा हुआ पक्षी जैसे अपने माता और पिता की राह देखते रहता है, कब मेरे माँ और बाप आएंगे, कब मेरे माता पिता आएंगे और कब मुझे भोजन खिलाएंगे, इतनी राह प्रभु मैं आपकी देख रहा हूं, कब आप मुझे दर्शन देंगे। स्तनयम यथावत्सरा शुद्ध आर्ता, जैसे एक ताजा जन्मा हुआ बछड़ा उनकी मां चरने के लिए जंगल में गई है, जैसे एक बछड़ा गाय की राह देखता है कब मेरी मां आएगी और मुझे दूध पिलाएगी, क्योंकि बछड़ा जो होता है अपनी मां के अलावा और किसी का दूध नहीं पीता है, गाय के बछड़े जो होते हैं, गाय के बछड़े अपनी माँ गाय के अलावा और किसी के दूध नहीं पीते हैं, परंतु भैंस के जो बच्चे होते हैं वे कहीं भी मुंह मार लेते हैं, कहीं भी, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि गाय का दूध पीना चाहिए, यदि हम गाय का दूध पिएंगे तो हमारी बुद्धि गाय के समान होगी, केवल एक निष्ठ बुद्धि होगी। गीता में भगवान कहते हैं बहु शाखाय अनंताश्य बुद्धयो व्यवसायिनाम, यदि यह बुद्धि बहुत भागों में विभत्स हो चुकी है ऐसा व्यक्ति कभी समाधि में स्थित नहीं हो सकता है। तो गाय के दूध की महिमा, जैसे गाय का बछड़ा दूध से भूखा है, दूध पीना है परंतु मां घर पर नहीं है, जैसे अपनी मां की राह देखता है वैसे प्रभु मैं आपकी राह देख रहा हूं। प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा, तीसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कोई प्रतिव्रता नारी हो, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री हो और उनका पति परदेश गया हो, कई सालों से परदेश गया है और वापस नहीं लौटा है, यहां पर उस स्त्री को बहुत दुखी किया जा रहा है, सब लोग डांटते हैं गाली देते हैं, जैसे पतिव्रता नारी अपने परदेश गए हुए पति की राह देखती है कब मेरे पति आएंगे और मुझे सुखी करेंगे, वैसे ही प्रभु मैं आपकी राह देख रहा हूं, कब आप आओगे और मुझे दर्शन प्रदान करो। मनो अरविंदाक्ष दिदृशते त्वाम, हे कमल नयन, हे कमल जैसी आंखों वाले प्रभु, जैसे अजात पक्षा पक्षी का बच्चा उनकी माता पिता की राह देखता है, जैसे बछड़ा गाय की राह देखता है और जैसे पतिव्रता नारी अपने परदेश गए पति की राह देखती है, वैसे ही मैं आपकी राह देख रहा हूं, प्रभु आप दर्शन दीजिए। वित्रासुर की दृष्टि अपने ऊपर जा रही है कि आप मुझे दर्शन कैसे दोगे, मैं जो आपको प्रार्थना कर रहा हूं खामखा प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप मुझे दर्शन दे सकते हो, क्योंकि दर्शन तो आप उसे देते हो जो आपकी भक्ति करते हैं, भक्ति कर करके जो तड़पते रहते हैं उसे आप दर्शन देते हो, मैं तो असुर हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो रजस तम रजोगुण और तमोगुणी स्वभाव वाला हूं, आप मुझे कैसे दर्शन दे सकते हो, इसलिए प्रभु आप दर्शन न दो तो कोई बात नहीं, परंतु आप अपने भक्तों का दर्शन मुझे दीजिए। अंतिम श्लोक में वित्रासुर कहते हैं मामोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म प्रभु हे कृष्ण हे ईश्वर माम उत्तम श्लोक जनेषु शक्य। आप अपना संग प्रदान न करो कोई बात नहीं, परंतु आपके उत्तम श्लोक आपके उत्तम भक्तों का संग प्रदान कीजिए। वही बात फिर से दोहराती, संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी। इस संसार में प्राय सब लोग अपने कर्म के द्वारा इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं और फंसकर पाप करने में लगे हुए हैं। प्रभु मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, जो लोग माया में फंसे हुए हैं ऐसे लोगों का संग मुझे कभी न हो। संग की बात छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों का दर्शन भी मुझे कभी न हो। मुझे केवल आपके भक्तों का दर्शन हो और आपके भक्तों का संग हो, यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना। अद्भुत प्रार्थना करते हैं। इस श्लोक में वृत्रासुर भगवान को नाथ कहते हैं, हे नाथ श्वासक्त चित्यस्य न नाथ भूयात। भागवत के प्रत्येक श्लोक में बहुत भाव छिपे हैं। भगवान को नाथ कह रहे हैं, वास्तव में भगवान ही नाथ है, कृष्ण ही नाथ है। नाथ का अर्थ होता है कंट्रोलर, वश में रखने वाला। ये नाथ शब्द नथ से बना है, जैसे माताएं जो होती हैं नाक में नथनी पहनती हैं, तो ये नथ से नाथ शब्द बना है। जैसे जो गांव में रहे वे जानते होंगे, किसान जो होते हैं बैल के नाक में रस्सी डालते हैं, बैल के नाक में रस्सी डालकर वे रस्सी को अपने हाथ में पकड़ते हैं और बैलगाड़ी से जोड़ देते हैं। फिर वह किसान उस बैल को जिस दिशा में लेकर जाना हो उस दिशा में वह बैल चलता है, और जब वह रस्सी को खींच लेता है तो वह बैल इतना नाक में उसे लगता है, इतना दर्द होता है, बेचारा खड़ा रह जाता है। जैसे एक किसान बैल की नाक में रस्सी डालकर उस बैल को कंट्रोल करता है, जैसे चाहे वैसे चलाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस संसार के सभी जीवों के नाक में रस्सी डालकर इस संसार के जीवों को चलाते हैं। इसीलिए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृति। इस संसार में एक ही ईश्वर है, वो है कृष्ण, और उसके अलावा जितने भी हैं ये सब उनके भृत्य अर्थात सेवक है, नौकर है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जाहे देखे नाचाय ते तेछे करे नीति। भगवान श्री कृष्ण जैसे जिस व्यक्ति को नचाना चाहे इस संसार में व्यक्ति वैसे नाचते रहता है। कुछ लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि बैल के नाक में किसान रस्सी डालता है, वो रस्सी तो दिखती है, परंतु भगवान ने जीवों के नाक में रस्सी डाली है वे तो दिख तो नहीं रही है। तब इसका उत्तर यमराज जी भागवत के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय में देते हैं कि भगवान की रस्सी उस किसान की रस्सी के समान नहीं है, भगवान की रस्सी बहुत सूक्ष्म रस्सी है। यद्यपि किसान की रस्सी से भी बहुत मोटी रस्सी है, परंतु दिखती नहीं है। और ये रस्सी क्या है? कहते हैं ओतम पोतम प्रोत्पत वधत्य विश्वम। भगवान इस संसार के जीवों को माया रूपी रस्सी से बांध कर रखते हैं। माया भगवान की एक ऐसी रस्सी है जिस रस्सी से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। सब लोग उस रस्सी में बंधे हुए हैं, सब। और भगवान जैसे उस रस्सी को आज्ञा करते हैं वैसे वो चलते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, सब लोग माया में ऐसे बंधे हैं। यमराज जी दृष्टांत देते हैं, जैसे ओतम प्रोतम पट वधत्य विश्वम, जैसे गुण कर वस्त्र बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला जब इस कपड़े को बनाता है तो इस कपड़े में फेविकोल नहीं लगाता है, परंतु धागे को ऐसे फंसा देता है कि यह कपड़ा खुल नहीं सकता है, इसमें कुछ चिपकाया हुआ नहीं है, परंतु धागों को इस प्रकार से फंसाया है कि कुछ छूट नहीं सकता है, वैसे ही भगवान ने संसार के जीवों को माया के द्वारा ऐसे फंसा कर रखा है, चाहते हुए भी कोई छोड़ नहीं सकता। व्यक्ति देखता है कि हमारे कुटुंब से हमें जितना दुख मिलता है उसे और किसी से नहीं मिल रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं कि हमारे अपने जितना दुख देते हैं उतने पाकिस्तान वाले नहीं देते हैं, क्योंकि शरीरे अरि प्रहरति, जो शत्रु है वो तो शरीर पर वार करते हैं, परंतु हमारे अपने जो होते हैं स्वजन हृदयस्तु वा स्वदन, स्वजन जो होते हैं हृदय पर वार करते हैं। शरीर पे लगा हुआ वार तो हॉस्पिटल में जाकर ठीक भी हो जाता है, परंतु स्वजन जो ऐसा ऐसा वार करते हैं कभी ठीक नहीं होता है। हमारे अपने ही इतना दुख देते हैं, और अपनों में भी हमारे अपनी पत्नी और अपने बच्चे जितना दुख देते हैं उतना पड़ोसी नहीं देते हैं। ये सत्य बात है। एक व्यक्ति को पत्नी और पुत्र से, या पत्नी को पति और पुत्र से, सबके लिए है, जितना दुख मिलता है उतने पड़ोसी दुख नहीं देते हैं। पत्नी चाहती है कि ये पति ऐसा मिला है, इतना दुख मिल रहा है, इतना दुख झेल रहे हैं, और पति भी सोचता है कि इतना दुख, दुख क्या है? प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद में कहते हैं कि एक पति अपनी पत्नी और बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करता है, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए कुटुंब पोषाय वियन निजायु, अपनी सारी आयु बर्बाद कर देता है, प्राणियों की तरह परिश्रम मेहनत करता है, परंतु फिर भी पत्नी जीवन में कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप आराम कीजिए। इतनी इतनी मेहनत करने के बाद भी पत्नी कहती है आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आप कुछ काम के ही नहीं हो। बेचारे सुबह से लेकर शाम तक इतनी इतनी मेहनत करते रहते हैं, परंतु बच्चे एक बार भी नहीं कहते पिताजी बस आप अब कुछ मत कीजिए। आज के बच्चे इतना ही कहते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तब व्यक्ति को बहुत दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख अपने घर से ही मिलता है, परंतु फिर भी व्यक्ति उस घर को छोड़ नहीं सकता। कल्पना कीजिए कैसा बंधन है, कैसे फंसा कर रखा है सबको। एक स्त्री दिन में 10 बार सोचती है कि घर छोड़कर चली जाओगी, परंतु 10 नहीं 100 साल बीत जाता है परंतु घर को नहीं छोड़ सकती। बताइए भगवान का बंधन नहीं तो क्या है? दिखता नहीं है परंतु बहुत कड़ा बंधन है। इसीलिए भगवान को नाथ कहा जाता है। भगवान सबको बंधन में रखकर सबको नचाते हैं, परंतु जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान अपना बंधन उस पर नहीं रखते हैं। वास्तव में बंधन ऐसे प्राणियों के ऊपर डाला जाता है जो उच्छृंखल हो, जो आज्ञाकारी न हो, जो शरणागत न हो, जिसे बिगड़ेल बैल होते हैं उसे बांध कर रखा जाता है। परंतु अच्छे गाय और अच्छे बैल को बांध कर नहीं रखते हैं, वे तो वैसे ही घर पर रहा करते हैं। वैसे जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उसे भगवान स्वतंत्र छोड़ते हैं, परंतु जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग केवल पाप में पड़े हैं, भगवान उसके नाक में रस्सी फंसा देते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम भी भगवान के शरणागत हो जाएं और भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे नाथ हो, हमें आपका सेवक हो। वृत्रासुरूप भगवान से प्रार्थना करता है, हे नाथ, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप ही संसार के नाथ हो, जगत के नाथ, इसलिए आपका नाम तो जगन्नाथ है, जगत के नाथ हो, आप मेरे पर कृपा करो कि मैं आपके भक्तों का नित्य निरंतर संग करता हूं। वित्रासुर भगवान से प्रार्थना कर चुका और यहां पर इंद्र को कह रहा है कि इंद्र मारो मुझे। इंद्र बहुत डर रहा था, इंद्र को कह रहा है इंद्र मारो, तुम मुझे मार डालो और मारकर स्वर्ग प्राप्त करो। हे इंद्र, तुम मुझे मार डालोगे, मैं मर जाऊंगा, परंतु मर कर भी जीत मेरी होगी, क्योंकि तुम जीवित रह कर भी क्या प्राप्त करोगे? स्वर्ग। तुम मुझे मारकर भी केवल स्वर्ग प्राप्त करोगे, परंतु मैं मरकर वैकुंठ प्राप्त करूंगा, इसलिए जीत मेरी हो। मैं मरना चाहता हूँ, मार डालो मुझे, मेरी बुद्धि और मन भगवान में स्थित है, मरकर भी वैकुंठ मिलने वाला है, मेरी विजय होने वाली। इतना कहते ही इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा। भागवत में वर्णन है वित्रासुर इतना भयावह असुर था, इतना भयावह था, वित्रासुर के सिर को काटने के लिए इंद्र को 100 साल लगे। 100 साल तक इंद्र अपने वज्र से वित्रासुर के सिर को घींचता रहा, तब जाकर उसका धड़ से सिर अलग हुआ और वित्रासुर धड़ाम करके पृथ्वी पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे
हरे, कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार वित्रासुर वीर गति को प्राप्त हुआ। यहां पर 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि इस प्रकार वित्रासुर युद्ध भूमि में गिर गया और इंद्र को पुनः स्वर्ग प्राप्त हो गया, तब परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न उठा। परीक्षित उवाच, रज तम स्वभावस्य ब्रह्मन वित्रस्य पापमन नारायणे भगवती कथम आसी दृढ़ामति। अब परीक्षित का प्रश्न है कि प्रभु, इतना बड़ा असुर, पाप करने वाला, तमोगुण में पड़े रहने वाला असुर अचानक भगवान को इतनी सुंदर प्रार्थना कैसे करने लगा? परीक्षित महाराज बहुत सतर्क है, बहुत बुद्धि से प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न के प्रारंभ में ही परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ब्राह्मण कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को संबोधन दे रहे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का, ब्राह्मण के 3 अर्थ होते हैं। ब्राह्मण का 1 अर्थ होता है भगवान। क्या सुखदेव गोस्वामी भगवान है? सबसे पहले ब्राह्मण का अर्थ समझना होगा। ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान। भगवान के 3 स्वरूप है। भागवत में आया है, वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम्, ब्रह्म इति भगवान इति परमात्मा इति शब्दते। भगवान का 1 स्वरूप अपने धाम में विराजते हैं। अपने धाम में रहकर भगवान जो लीला करते हैं वे भगवत स्वरूप है, उसे भगवान कहा जाता है। वही भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो सबके हृदय में रहने वाले उसी भगवान को परमात्मा कहा जाता है, ये 2रा स्वरूप। और वही भगवान इस संसार के कण कण में है, तो संसार के कण कण में रहने वाले प्रभु को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 स्वरूप है। तो ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान, और जो भगवान को जान चुका है ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। सुखदेव गोस्वामी भगवान को पूरा पूरा जान चुके थे, इसलिए श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ब्राह्मण कह रहे हैं, हे ब्राह्मण। ये पहला अर्थ हुआ ब्राह्मण का। 2रा अर्थ, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। वेद को ब्रह्म कहा जाता है। प्रश्न होता है क्यों वेदों को ब्रह्म क्यों कहते हैं? वेदों को ब्रह्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेद जो है ब्रह्म से, भगवान से प्रकट होते हैं। भगवान से प्रकट होने के कारण वेद को ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, और वेद को जो पूरा पूरा जान चुका है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। सुखदेव गोस्वामी समस्त वेदों को जान चुके थे, इसलिए श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ब्राह्मण कह रहे हैं। और ब्राह्मण का 3रा अर्थ होता है सर्वज्ञ, जो सभी के बारे में जानने वाले। तो यहां पर परीक्षित महाराज इतने सतर्क हैं, उनका भाव तो देखिए। कहते हैं आप भगवान को समझने वाले हो, आप समस्त वेद को जानने वाले हो, आप सर्वज्ञ हो, सबके बारे में जानने वाले हो, इसलिए मैं आपको जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर देने में आप समर्थ हो। पहले ही गुरु की योग्यता बता दी, क्योंकि आप ब्राह्मण हो इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? कहते हैं रज तम स्वभावस्य, जो स्वभाव से, स्वभाव का एक अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति जो है जन्म से मरण तक किसी की बदल नहीं सकती है। जन्म से जिसकी जैसी प्रकृति होती है, जन्म से जिसका जो स्वभाव होता है, ये मृत्यु तक रहता है। तो ये वृत्रात सुर का जन्म से रजोगुणी, तमोगुणी और पाप करने वाला स्वभाव था। वित्रासुर का जन्म से रजोगुणी स्वभाव का अर्थ होता है रजसो लोभ एवच, लोभ करना और केवल काम धंधा और बिजनेस के लिए ही सोचते रहना, उसके अलावा और कुछ नहीं करना, इसे रजोगुण कहा जाता है। गीता में भगवान इस बात को कहते हैं, लोभ करना, धन एकत्रित करना, जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, इसे रजोगुण कहा जाता है। तमोगुण का अर्थ क्या होता है? तमोगुणी व्यक्ति सोने में, उत्पाद करने में, किसी के साथ झगड़ा करने में बहुत आगे होते हैं। और पापी का अर्थ होता है भगवान के नियम के विरुद्ध जो कार्य करे उसे पापी कहते हैं। तो ये रज तम और पापी, जन्म से ही वित्रासुर का यह स्वभाव था। तो मेरा प्रश्न ये है कि जन्म से जो सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी और पापी है, ऐसे वित्रासुर की नारायणे भगवती, भगवान नारायण में कथम आसी दृढ़ामती, ऐसे पापी वित्रासुर की नारायण में, नारायण का अर्थ होता है, नार का अर्थ होता है मनुष्य का समूह, नर का अर्थ होता है मनुष्य, नर का अर्थ है मनुष्य, और नर को बहुवचन में नार कहा जाता है। नार का अर्थ होता है कई सारे मनुष्य, और अयन का अर्थ होता है उसमें रहने वाले। जो कई सारे मनुष्यों के बीच में रहते हैं उसे नारायण कहा जाता है। तो नारायण का एक अर्थ है सभी मनुष्य के बीच में, अर्थात हृदय में रहने वाले हैं, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ है कि गोप ग्वाल सखाओं से घिर कर रहते हैं, गोप ग्वाल सखाओं के बीच में रहते हैं, इसलिए कृष्ण को नारायण कहा जाता है। नार का एक अर्थ होता है पानी, और आयन का अर्थ होता है शयन करना। तो जो पानी में शयन करते हैं उसे भी नारायण कहा जाता है। कुल मिलाकर नारायण का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु। तो कहते हैं नारायणे भगवती, भगवान नारायण में दृढ़ामति कथम आसीत, इतना पापी, रजोगुणी और तमोगुणी यह वृत्रासुर की भगवान नारायण में दृढ़मति कैसे हो गई? इतनी दृढ़मति कि भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान से केवल भक्तों का संग मांगा। बहुत सुंदर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। वास्तव में परीक्षित का प्रश्न उनके लिए नहीं, हम सबके लिए है। क्योंकि देखिए, हम लोग रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए हैं, हम लोग भी पाप करते हैं, हम लोग के लिए बहुत उपाध्याय प्रश्न है। प्रश्न यह है कि रजोगुण और तमोगुण और पाप में रहने वाले व्यक्ति की मति नारायण में कैसे लगी? इसका उत्तर यदि हम सुन लेते हैं तो हमारी मति भी नारायण में लग सकती है। परीक्षित महाराज इसी प्रश्न को और आगे बढ़ा रहे हैं, अपने प्रश्न को और क्लियर कर रहे हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी किससे कहते हैं,
देवानां शुद्ध सत्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्ति मुकुंद चरणे प्रायेणोपजायते।
शुद्ध सत्वा नाम देवा नाम, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, इस संसार में देखा गया है शुद्ध सत्वा नाम देवा नाम, अर्थात प्राय सत्व गुण में रहने वाले देवता भी भक्ति न, देवता लोग जो होते हैं ये प्राय सत्व गुण में रहते हैं, निरंतर 2400 घंटा सत्व गुण में रहने वाले देवता भी भक्ति नहीं कर सकते हैं। जो भक्ति वृत्रासुर ने की ऐसी भक्ति देवता भी नहीं कर सकते हैं। और देवता की बात छोड़ दीजिए, चा अमल आत्म नाम ऋषि नाम भक्ति न, जिसका मल, जिसका मन अमल हो चुका है, जिसके मन में थोड़ा भी मल नहीं है, मल का अर्थ है काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ईर्ष्या, संसार को भोगने की कामना, जो लोग ये सभी दोषों से मुक्त हो चुके हैं, सभी मलों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे ऋषियों की भी मति भगवान में इतनी नहीं लग सकती है। इस संसार में देखा गया है, संसार के लोग संसार से वैराग्य ले लेते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, पत्नी बच्चे को छोड़ देते हैं, परंतु गांजा और चाय को नहीं छोड़ सकते। संसार में देखा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि होने के बाद भी उनकी भक्ति इतनी दृढ़ नहीं है जितनी ये वृत्रासुर की थी। देखिए परीक्षित का प्रश्न और आगे बढ़ रहा है कि देवता भी इतनी भक्ति नहीं करते, ऋषि मुनि भी इतनी भक्ति नहीं करते हैं। संसार में कई लोग ऋषि मुनि हो जाते हैं परंतु भगवान को ने यही नहीं जान सकते। वे लोग सोचते हैं भगवान निराकार है, निराकार ब्रह्म, या कुछ लोग कहते हैं भगवान केवल ज्योति है, केवल उसका ध्यान करो। कुछ लोग यह कहते हैं कि भगवान, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब लोग भगवान। तो ऋषि मुनि तो बहुत सारे हैं, परंतु भक्तिर मुकुंद चरणे न, मुकुंद के चरणों में, कृष्ण के चरणों में उनकी भक्ति नहीं देखी गई है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं की भी भक्ति उन भगवान कृष्ण में नहीं लगी, तो ये असुर की भक्ति कैसे हो गई? असुर इतनी बड़ी भक्ति कैसे करने लगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी कहे, क्या भगवान के चरणों में भक्ति करना जरूरी है? संसार में भी कुछ लोग पूछते हैं भक्ति क्यों करनी चाहिए, आप भक्ति करने के लिए क्यों कहते हो? क्या भक्ति करना बहुत जरूरी है? तो परीक्षित महाराज कहते हैं हां, क्योंकि जिसकी भक्ति वृत्रासुर किया है वो और कोई नहीं, वे मुकुंद है, और मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति ददाती इति मुकुंद। मुक्ति का दो अर्थ होता है, मुक्ति का एक अर्थ होता है कि संसार के दुखों से मुक्ति, और मुक्ति का दूसरा अर्थ होता है कि इस संसार से ही मुक्ति। तो संसार के लोग ये दोनों चाहते हैं, संसार से मुक्ति भले न चाहे परंतु संसार के दुखों से मुक्त होना सब लोग चाहते हैं। सब लोग दुखी हैं और सब लोग सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि दुख से मुक्त होना चाहते हैं, और दुखों से मुक्त होने के बहुत बहुत प्रयास करते हैं परंतु दुख से मुक्त नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि दुखों से मुक्ति करने वाले एकमात्र भगवान मुकुंद है, मुकुंद ही दुखों से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका नाम ही मुकुंद है। तो दुखों से मुक्त होने के लिए मुकुंद, मुकुंद चरणे भक्ति आसित, मुकुंद के चरण में भक्ति होनी चाहिए। परंतु बड़े बड़े लोगों की भी मुकुंद के चरणों में भक्ति नहीं देखी गई। आगे कहते हैं रजो भी सम संख्याता पार्थिवेरिव जंतव तेषा मे केच ने हंते श्रेयो वे मनुजादय। इस संसार में कई सारे मनुष्य हैं, इस संसार में कई सारे मनुष्य हैं, परंतु अपने कल्याण के बारे में कौन सोचता है? सबसे पहले तो मनुष्य यही नहीं जानते हैं कि अपना कल्याण कैसे हो। और भक्ति की दुर्लभता बताते हुए कहते हैं कि वृत्रासुर ने जो भक्ति की है वे सब लोग नहीं कर सकते हैं। प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनेव द्विजोत्तम मुमुक्षुणाम सहस्रेषु कश्चिन मुचेत सिद्धति। हे द्विज, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को द्विज कह रहे हैं। द्वि का अर्थ होता है दो, ज का अर्थ होता है जन्म। जिसका दो बार जन्म होता है उसे द्विज कहा जाता है। सुखदेव गोस्वामी का एक बार अपनी माता के गर्भ से जन्म और दूसरी बार जब वे दीक्षा लेते हैं, यज्ञोपवित्र संस्कार धारण होता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। जन्मना शूद्र जायन्ते संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, परंतु जब संस्कार होता है तो उसे द्विज कहा जाता है। हे द्विज, हे द्विजो में उत्तम, अब यहां पर दो बात है। एक तो है द्विज, एक तो है जिन्होंने जनोई धारण कर ली है और जो अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है उसे द्विज कहा जाता है। परंतु आज संसार में देखा गया है, ब्राह्मण होने के बाद भी पान मावा सिगरेट और तंबाकू खाते हैं प्राय ब्राह्मण। यद्यपि ब्राह्मणों का काम है संसार को व्यसन से मुक्त कराए, संसार को ज्ञान प्रदान करे, परंतु आज के ब्राह्मण स्वयं व्यसन करते हैं। तो ऐसे लोगों को केवल द्विज कहा जाता है, केवल ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे जो भक्त हैं उसे द्विजोत्तम कहा जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज केवल द्विज नहीं कह रहे हैं, इस श्लोक में द्विज उत्तम, हे द्विजों में श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। इस संसार में प्रायः मुमुक्षु का अर्थ होता है जो मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति चाहने वाले बहुत कम लोग हैं, और मुक्ति चाहने वालों में भी मुक्ति प्राप्त करने वाले तो उससे भी कम। आप सब लोग को यह बात समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है, परंतु यह सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं। साक्षात भगवान इस सिद्धांत को समझाने के लिए इस संसार में अवतरित हुए और रूप शिक्षा के द्वारा रूप गोस्वामी को यह उपदेश दिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु 10 अश्वमेघ घाट के ऊपर बैठकर रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्षते जीव करय भ्रमण। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एत ब्रह्मांड भरी, इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीवों की संख्या है। आप देखिए भक्ति कितनी दुर्लभ है, इस कथा से आपको पता चलेगा। भक्ति सबके बस की बात नहीं है, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस भक्ति के अंतर्गत आ चुके हैं। कहते एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण। ब्रह्मांड का अर्थ, ब्रह्मांड का अर्थ होता है जैसे यह पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी लोक के ऊपर 7 नीचे 6 कुल मिलाकर 14 लोक है। यह 14 लोक से बना हुआ, इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एत ब्रह्मांड भरी, इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव रहते हैं, और ये अनंत जीव एक प्रकार के नहीं, 84 लक्ष योनि ते करय भ्रमण, 84 लाख योनि में सब लोग भ्रमण कर रहे हैं। कभी पृथ्वी पे तो कभी ऊपर के लोकों में, कभी नीचे तो कभी नरक लोकों में घूमते रहते हैं। तब मान लीजिए रूप गोस्वामी ने प्रश्न पूछा कि इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव है। वास्तव में अनंत जीव की संख्या, इतने जीव, हम और आप बैठे हैं, हमारे और आपके बीच में कई सारे जीव घूम रहे हैं, हम देख नहीं सकते। यदि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाए तो वो हम दिखाई सकता है। रूप गोस्वामी ने पूछा कि अनंत अनंत जीव हैं तो फिर रहते कहां पर हैं? क्योंकि अनंत लोगों को रहने के लिए तो अनंत जगह चाहिए। तब महाप्रभु कहते हैं कि हे रूप गोस्वामी, हे रूप, ये जीव को रहने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए, क्योंकि जीव का स्वरूप बहुत छोटा है। केशाग्र शत भागस्य पुनः शतांश करी तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। कहते हैं कि ये जीव जो है बहुत छोटे छोटे हैं। कितने छोटे हैं? वास्तव में हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का साइज क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं केशाग्र शत भागस्य, हमारा जो ये केश है, ये बाल, एक बाल को उखाड़ कर उस बाल का जो पॉइंट है, बाल के पॉइंट का एक केश 100 हिस्से किए जाए, यद्यपि नहीं हो सकते हैं, परंतु कल्पना करो बाल के अग्र भाग के 100 हिस्से और 100 हिस्से में से एक हिस्सा को लेकर पुनः शतांश करी, पुनः इसके 100 भाग किए जाए। इसका अर्थ हुआ कि बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा यह है हमारी आत्मा की साइज। आत्मा कितना बड़ा है? कहते हैं बाल के अग्र भाग के 10,000वां हिस्सा। अब बताइए इस इतनी छोटी आत्मा के लिए, अर्थात इतने छोटे जीव के लिए हम कितने बंगले खरीदते हैं, कितने बेडरूम बनाते हैं, कितने बड़े बड़े घर रखते हैं, क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है? महाप्रभु कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जीवों की संख्या बहुत अनंत अनंत है। इसका विभाजन करते हैं, तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद। संसार में अनंत अनंत जीव है। ये अनंत जीव दो प्रकार के हैं, एक है स्थावर और एक है जंगम। स्थावर का अर्थ होता है एक जगह पर खड़े रहते हैं, वहां से हिल नहीं सकते हैं। और जंगम का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। दो प्रकार के जीव, जंगम में तिर्यक जल स्थलचर विभेद। स्थावर जो है और जंगम जो है, चलने वाले जो है, उनमें 3 प्रकार के जीव है, स्थलचर, नभचर और जलचर। कुछ जीव रास्ते में स्थल पर चलने वाले हैं, कुछ जीव पानी में चलते हैं और कुछ जीव आकाश में चलते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि किस किस जगह पर कितने जीव रहते हैं। कहते हैं जलजान नव लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जीव पानी में रहते हैं। 9 लाख प्रकार के जीव, जैसे मगर, शार्क, वेल, ये एक एक प्रकार के जीव हुए। ऐसे 9 लाख प्रकार के अलग अलग जीव और एक प्रकार में कई लाखों करोड़ों जीव, परंतु उनके 9 लाख प्रकार हैं। ये 9 लाख प्रकार के जीव जल में, स्थावरा लक्ष्य विशंति, और जो स्थावर है वृक्ष, पेड़, पौधे, ये 20 लाख प्रकार के हैं। कृमिया रुद्र संख्या का, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी इत्यादि जो नाली में और गटर में पड़े रहते हैं, ऐसे 11 लाख प्रकार के जीव इस संसार में हैं। पक्षीणाम 10 लक्षणाम, अपनी पंख से उड़ने वाले 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। आप लोग कह सकते हो ये तो हम नेशनल डिस्कवरी में भी नहीं देखा 10 लाख प्रकार के पक्षी, परंतु भगवान ने पहले ही कह दिया, केवल पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के अलावा और अन्य अन्य लोकों में ये सारे जीव भरे हुए हैं। 30 लक्षाणी पशव, 30 लाख प्रकार के 4 पैर पर चलने वाले जीव इस संसार में है। और 4 लक्षाणी मानुष, और केवल मात्र 4 लाख प्रकार के मनुष्य इस संसार में। मनुष्य की संख्या वैसे भी बहुत कम है, 84 लाख योनि में केवल 4 लाख प्रकार के ही मनुष्य हैं, और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु। आपका प्रश्न होगा मनुष्य तो एक प्रकार के दिखते हैं, 4 लाख प्रकार कैसे? हाँ, तो सबके स्वभाव के अनुसार, चेतना के अनुसार उनमें भी अलग अलग प्रकार महाप्रभु ने किया है। अच्छा, मनुष्य में 4 लाख प्रकार कौन से हैं? तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। मनुष्य में भी प्रायः लोग आदिवासी जैसे होते हैं, जो भक्ति धर्म कुछ जानते ही नहीं है, मनुष्य के स्तर पर भी नहीं है, कैसे भोजन करना चाहिए अभी नहीं पता। और उनमें से कुछ लोग म्लेच्छ हो गए। म्लेच्छ का अर्थ होता है गाय को खाने वाले। देखिए मनुष्य की संख्या 4 लाख प्रकार की, उनमें से कुछ लोग आदिवासी, कुछ लोग म्लेच्छ, कुछ लोग शबर अर्थात सुअर को खाने वाले। और उसमें भी कुछ लोग देवता, देवता भी मनुष्य की योनि में आते हैं, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, किरात, हुणाग्र, पुलिंद, पुलकसा, कंका, आभीर, यवना, ये सब मनुष्य की कोटिया है। तो मनुष्य की संख्या बहुत कम है और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा मनुष्य पाप की वृत्ति में पड़े हुए हैं। वेद को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। देखिए मनुष्य की संख्या जितनी है उनमें से वेदों को मानने वाले बहुत कम, और जो लोग वेदों को मानते हैं बाकी के सबको छोड़ दीजिए, निकालते जाइए। जैसे डायमंड मार्केट में चाणी मारते हैं वैसे म्लेश यौवन शबर ये आदिवासी ये सबको निकाल दीजिए, केवल वेदों को जानने वाले को रखिए। डायमंड वाले बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। वेद को जानने वाले जो हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेद निष्ठ मध्य अधेरक वेद मुखे मानी। वेद सबसे पहले मनुष्य में वेद को जानने वाले बहुत कम, हमारे काम का माल तो बहुत कम निकलेगा अंत में। वेद को जानने वाले बहुत कम और उसमें भी वेद को जानने वाले जो हैं उनमें से प्रायः वेद को जानते हैं परंतु मानते नहीं है। संसार में होते हैं, भागवत बहुत अच्छा है, गीता बहुत अच्छी है परंतु जीवन में कुछ नहीं। वेद मुखे मानी, केवल मुंह पर है, जीवन में उतारते नहीं है। तो वेद को जानने वाले जो हैं तो उसमें से वेद को केवल मुख से मानते हैं, जीवन में धारण करने वाले बहुत कम, तो इसको भी निकाल दीजिए। वेद को जानने वाले बहुत कम और मानने वाले उससे भी कम, बाकी के सबको छोड़ दीजिए, केवल वेद को जो मानने वाले हैं। वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाहीं गणे। अब कुछ लोग वेद को मानते हैं परंतु वेद को कैसे मानते हैं? वेदों में जो कर्मकांड, वेदों में कई प्रकार हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, तो उनमें से जो कर्मकांड है और उसमें भी जो पशु बलि होती है तो वे वेदों के उस भाग को ले लेते हैं और अपनी इंद्र तृप्ति करते हैं, गाय को बकरी को मारकर खाते हैं और कहते हैं ये तो वेद में लिखा है, वेदों में लिखा है आप पशु को मारकर खाना चाहिए। तो वेदों का सहारा लेकर पाप करते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति करते हैं। तो प्रायः वेद को मानने वाले में भी वेदों का सहारा लेकर पाप करने वाले बहुत सारे हैं, परंतु वेदों को ठीक ठीक प्रकार से जानने वाले मानने वाले बहुत कम हैं। कहते हैं वेदों को वास्तविक रूप में जानने वाले धर्मचारी गण मंदिये बहुत कर्मनिष्ठ। वेद को मानने वाले बहुत कम और उसमें भी वेदों में जो धर्म कांड है उसको मानने वाले बहुत कम, और धर्म कांड में भी प्राय सब लोग कर्म कांड में फंसे हुए हैं। कर्म कांड अर्थात हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, देवी देवता की इतनी मन्नत रखेंगे तो इतना मिलेगा, इसे कर्म कांड कहा जाता है। प्राय लोग इस देवी देवताओं के कर्म कांड के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनमें से जो कुछ लोग हैं, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कहते हैं करोड़ों करोड़ों कर्मनिष्ठ होते हैं उनमें से एक ज्ञानी जो है श्रेष्ठ होता है। करोड़ों करोड़ों कर्मकांडी मनुष्य में से एक ज्ञानी प्रकट होता है, और करोड़ों करोड़ों ज्ञानी में से एक मुक्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति निकलता है। करोड़ों में से एक ज्ञानी और करोड़ों ज्ञानी में से मुक्ति को चाहने वाला एक व्यक्ति प्राप्त होता है, और ऐसे मुक्ति को प्राप्त करने वाले में से परीक्षित महाराज कहते हैं मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपि महामुने। ये सबको छांटते 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 अंत में मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले बहुत कम, बहुत गिने चुने, और मुक्ति को प्राप्त करने वाले में भी कृष्ण को प्राप्त करने वाले, कृष्ण की भक्ति करने वाले, भगवान श्री कृष्ण कहते कोई एक विरला ही मेरी भक्ति कर सकता है, अन्य सब लोग यहां से निकल गए। भगवान ने उसे वीर कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ययति सिद्ध्यते यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हे अर्जुन, सहस्रेषु मनुष्येषु करोड़ों करोड़ों मनुष्य में से कोई एक मेरी भक्ति कर सकता है। आप देखिए कितनी लाख प्रकार की योनि है, मनुष्य की संख्या कितनी सारी है, उसमें छांटते 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 करोड़ों अरबों में से कोई एक व्यक्ति भक्त बन सकता है, एक व्यक्ति। यदि आपको हिसाब लगाना है लगा लीजिए, इस दुनिया में कितने लोग हैं और उन लोगों में से भक्त की संख्या 1% एक पॉइंट भी नहीं है। इसलिए भक्ति प्राप्त होना यह बहुत दुर्लभ है, भक्ति सबको नहीं मिलती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वह तो जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते, सब लोग ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं और ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, किसी भाग्यवान व्यक्ति को गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, उसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। जिसके ऊपर बहुत बहुत गुरु और भगवान की कृपा होती है वह व्यक्ति यहाँ बैठकर भागवत सुन सकता है, अन्यथा धन और पद के मद में भागवत नहीं सुन सकता। भगवान का विशेष कृपा पात्र वह जीव ही भागवत और भक्ति कर सकता है। अपने भाग्य को परखना चाहिए, हमारे अपने भाग्य को समझना चाहिए, हम कितने भाग्यशाली हैं कि ये करोड़ों करोड़ों जीवों में भगवान ने हमें चुना भक्ति करने के लिए। अब आइए हमारे पॉइंट के ऊपर। परीक्षित महाराज के कहने का भाव यह है कि हे सुखदेव गोस्वामी, करोड़ों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर सकता है और ये कल का असुर, ये वृत्रासुर भगवान की भक्ति कैसे करने लगा, कृपया करके आप मुझे उसका उत्तर दीजिए। वृत्रासुर किस प्रकार से भक्ति में संलग्न हुआ? वित्रस्तु सकथम पाप सर्वलोकोपतापन इत्थम दृढ़ मति कृष्ण आसित संग्राम उलबणे। हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यदि कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा हो और मंदिर में बैठकर भगवान की याद आए, ये तो साधारण बात है, ये तो हो सकता है, परंतु आसित संग्राम उलबणे, वे तो संग्राम में खड़ा था, युद्ध भूमि में खड़ा था, युद्ध कर रहा था। और आपको पता होगा युद्ध भूमि में रजोगुण और तमोगुण के अलावा और कुछ नहीं होता है, मारो और काटो बस। सतोगुणी व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता है, युद्ध करने के लिए रजोगुण को पैदा करना होता है। तो मंदिर में शुद्ध सत्व मंदिर में यदि कोई बैठा हो और भगवान की याद आए, ये ठीक है, ये समझ सकते हैं, परंतु आसित संग्राम उलबणे, इतने बड़े संग्राम में, इतने बड़े युद्ध भूमि में खड़े खड़े वृत्रासुर को भगवान की याद आ गई। यदि कोई साधु पुरुष भी ऐसी संग्राम में फंस जाए, कितना भी बड़ा भक्त, मान लीजिए आप कितने भी बड़े भक्त हो, युद्ध भूमि में खड़ा रख दिया जाए, भगवान की याद आएगी कि गोलियों से बचने की याद आएगी? हम तो यही सोचेंगे कि कैसे ये बाणों से और गोली से बचे, ऐसे भयंकर संग्राम में भगवान की याद कैसे कर ली, भगवान कैसे याद आ गए। हे सुखदेव गोस्वामी, अत्र न संशयो भूयात् श्रोतु कौतूहलम प्रभो यह पौरुषेय समस्त्रे सहस्राक्षम तोषयत्। हे सुखदेव गोस्वामी, अत्र इस विषय में न हमारा, मेरा नहीं, न का अर्थ होता है बहुवचन, इस विषय में न हमारा बहुत बड़ा संशय है। देखिए बहुत सुंदर कह रहे हैं, संशय तर्क नहीं है, परीक्षित महाराज तर्क नहीं कर रहे। संसार में प्राय कुछ लोग तर्क करते हैं, परीक्षित महाराज क्लियर कर रहे हैं, प्रभु ये हमारा संशय है और इसमें भी हमारी बुद्धि कम है, ऐसा नहीं है कि हम बुद्धिमान है और आपने बोलने में भूल कर दी। आप तो ब्राह्मण हो, आप तो वेदों को जानने वाले हो, परंतु हमारा कम बुद्धि होने के कारण हम में संशय है, इसलिए कृपया करके हमारे संशय को दूर कीजिए। मैं आपसे तर्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यदि संसार में कोई तर्क करने बैठे तो तर्क का कोई एंड नहीं है, तर्क का अंत नहीं आता है। तर्क अप्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो यत गतः सपन्ता। महाभारत में वेदव्यास जी लिखते हैं तर्को प्रतिष्ठ, तर्क का कोई अंत नहीं है। इसलिए महाजन जो कहते हैं, बड़े बड़े जो लोग कहते हैं, उसी की बात को सुनना चाहिए। तो अत्र न संशय भूयात्, हे प्रभु यहां पर मेरा एक संशय है। श्रोतुम कौतूहलम प्रभो, हे प्रभु यहां पर मुझे कौतूहल हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा असुर संग्राम में, युद्ध भूमि में पापी और तमोगुणी होने के बाद भी भगवान को कैसे याद कर लिया। और यह पौरुषन यदि प्रश्न हो कि वृत्रासुर इंद्र से डरकर भगवान की याद कर ली होगी, वित्रासुर इंद्र से डरकर भगवान को याद किया होगा, परंतु परीक्षित कहते नहीं नहीं प्रभु ऐसा भी नहीं है। यह पौरुषेण समरे, आपने ही तो सुनाया युद्ध में उसका कितना पौरुष था, कितना बल था, सामने लाखों की सेना और अकेला लड़ रहा था, वे कभी इंद्र से डरने वाला नहीं था। सहस्राक्षमतोषयत, इंद्र को भी भारी पड़ गया। ये सत्य बात है, वृत्रासुर इंद्र के साथ जब युद्ध कर रहा था, एक समय की बात, इंद्र ने वृत्रासुर के दोनों हाथ काट दिए। वृत्रासुर के हाथ काट देने के बाद भी वह वृत्रासुर दौड़ते हुए इंद्र के पास गया और इंद्र को अपने मुख में खा लिया। ये तो इंद्र के पास वज्र था, इसलिए कैसी भी करके वृत्रासुर के पेट को फाड़ कर बाहर निकल गए। नारायण कवच और वज्र का प्रभाव, ये भी आगे कथा आ गई। और जब वित्रासुर के सिर को काट दिया, केवल धड़ था वित्रासुर का, धड़ के साथ वित्रासुर लड़ रहा था, इतना भयंकर, इतना पौरुष था उनमें, शक्ति थी। इंद्र से डरकर भगवान को याद नहीं किया, ये सत्य बात है, तो फिर भगवान को अचानक क्यों याद करने लगा। बहुत सुंदर प्रश्न। यहां पर परीक्षित महाराज के प्रश्न समाप्त तो होते हैं और अगले श्लोक से सुखदेव गोस्वामी के उत्तर प्रारंभ होते हैं। परंतु इस श्लोक में इंद्र को एक नाम दिया गया है, सहस्त्राक्ष। इंद्र का एक नाम सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष का अर्थ होता है जिसकी सहस्त्र आंख है, उसे इंद्र कहा जाता है। हमारे पास दो आंख है, इंद्र के पास 1000 आंख है, इंद्र के शरीर पर 1000 आंख। तो प्रश्न होता है कि इंद्र को सहस्त्राक्ष क्यों कहा जाता है, इंद्र के शरीर पर 1000 आंख क्यों आ गई। यह प्रश्न भगवान श्री रामचंद्र को हुआ था। चलिए रामायण में कुछ देर चलते हैं। आइए रामायण में भगवान श्री रामचंद्र और लखन लाल को लेकर विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए निकले, और यज्ञ की रक्षा करने के बाद जब जनकपुर की ओर जा रहे थे, बीच में भगवान श्री रामचंद्र ने अद्भुत दृश्य देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आश्रम एक दीख मग माही, खग जीव जंतु तह नाही। रास्ते में भगवान श्री रामचंद्र ने एक आश्रम देखा, उस आश्रम में न तो कोई जीव जंतु मनुष्य कोई नहीं था, परंतु उस आश्रम में एक बहुत सुंदर शिला देखी, एक बहुत सुंदर एक स्त्री का पुतला देखा। स्त्री की शिला को देखकर भगवान श्री रामचंद्र को प्रश्न उठा और कहा कि हे मुनि, ये आश्रम का क्या इतिहास है, ये आश्रम इतना खाली खाली क्यों है, इतना सुंदर आश्रम बनाकर सब लोग कहां चले गए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, कही कथा कहो कथा कहो विशेषी। भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र जी को कहते हैं कि प्रभु आप हमें यह कथा सुनाइए। तब विश्वामित्र जी इतिहास सुनाते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, हे राघव, हे राम, वास्तव में ये और कोई नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, और गौतम ऋषि की पत्नी पापवश नहीं श्रापवश पत्थर के देह को धारण हुई है। अच्छा, गौतम ऋषि की पत्नी का देह पत्थर का कैसे हो गया? तो बहुत सुंदर कथा कहते हैं कि एक समय की बात, गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या दोनों साथ रहते थे। ये अहल्या ब्रह्मा जी की पुत्री बहुत सुंदर थी और उनके साथ गौतम ऋषि का विवाह। इंद्र बार बार गलती करना चलता रहता है। इंद्र ने एक बहुत बड़ी गलती की। इंद्र के मन में गौतम ऋषि की पत्नी के साथ संग करने का विचार आया। गौतम ऋषि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे और उसे जगाने वाले अलार्म नहीं था। वहां के कुछ मुर्गे जो होते थे वे बोलते थे और मुर्गे की आवाज सुनकर गौतम ऋषि घर से निकलकर नदी में स्नान करने चले जाते, यही उसके लिए अलार्म था। तो एक समय की बात, इंद्र की इच्छा गौतम ऋषि की पत्नी के साथ अहल्या के साथ संग करने की। तब इंद्र देवता, वे कोई भी रूप बना सकता है। इंद्र ने मुर्गे का रूप बनाया है और ये मुर्गे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे आवाज करते थे, उनके बदले ये 2:30 बजे बोलने लगा। गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई, मुर्गे की आवाज को सुनकर देखे बिना अपने कपड़े गमछा लेकर नदी में स्नान करने के लिए निकल गए। और यहां पर इंद्र अपना दूसरा रूप धारण किया, गौतम ऋषि का ही हूबहू उनकी जैसा रूप बना लिया और गौतम ऋषि का रूप बनाकर यहां झोंपड़ी में आ गया, आश्रम में आ गया। गौतम ऋषि की पत्नी भी बिचारी क्या जाने, अहल्या को पता नहीं था, ये तो जाने कि ये मेरे पति देव है। इंद्र ने अहल्या के साथ संग किया और संग करके जल्दी जल्दी वे बाहर निकलने जा ही रहे थे तो दूर से गौतम ऋषि ने देखा कि ये मेरे जैसा गौतम बाहर कौन निकल रहा है, देख लिया। गौतम ऋषि इस बात को समझ गए और इस बात को समझकर गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। श्राप तो बहुत कड़ा श्राप था, परंतु इंद्र की प्रार्थना करने पर गौतम ऋषि ने अपने श्राप को थोड़ा कम करके कह दिया कि तुमने आज बहुत गलत काम किया है, तुमने पाप किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी सारे शरीर पर आंख आ जाए, 1000 आंख तुम्हारे शरीर पर आ जाए। उस दिन के बाद इंद्र की ओर कोई देखने तक तैयार नहीं था। आप कल्पना तो करो, ये आंख यदि पूरे शरीर पर आंख आ जाए तो उसे कौन देखना चाहेगा, कौन स्पर्श करना चाहेगा? और वह आंख भी देखने का काम नहीं करती थी, केवल कुरूप बनाने के लिए गौतम ऋषि ने श्राप दिया। ये श्राप के कारण इंद्र के शरीर पर 1000 आंख आई, इसलिए यहां पर इंद्र को सहस्त्राक्ष कहा जा रहा है। परंतु कथा को अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए। गौतम ऋषि की पत्नी को श्राप लगा। कैसे श्राप मिला? गौतम ऋषि आश्रम में आए, अपनी पत्नी को पूछा क्या हुआ, साफ साफ बताओ यहां पर क्या हुआ। अहल्या तो देखती रह गई, तो वो कौन था, ये यहां पर आए, बिचारी कुछ बोल नहीं पाई। गौतम ऋषि पूछते रह गए, बताओ क्या हुआ क्या हुआ। अहल्या बेचारी कुछ नहीं बोल सकी। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर कह दिया कि जड़ के समान, पत्थर के समान खड़ी हो, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, पत्थर बन जाओ। पत्थर बन गया। अहल्या ने प्रार्थना प्रणाम किया, प्रभु इतना बड़ा श्राप मत दीजिए, मेरे मोक्ष के लिए कुछ सोचिए। तब गौतम ऋषि ने का हृदय पिघला और कहा कि देवी, मेरा श्राप कभी अमोघ नहीं जाता है। श्राप तो तुम्हें मिलेगा, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान श्री रामचंद्र आए और वे तुम्हारा उद्धार करें। और यहां विश्वामित्र जी भगवान राम को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, राघव, हे रघुवीर, जाओ और अपना चरण उस गौतम नारी के ऊपर स्पर्श करो और उसका उद्धार करो। भगवान श्री रामचंद्र जैसे ही गौतम नारी के पास गए, अपना चरण खड़ा किया, चरण की रज स्पर्श होते ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पर सद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही, पर सत पर पावन शोक न सावन होते ही वह पत्थर के शरीर में जो थी वे तुरंत स्त्री के रूप में आ गई और प्रकट हुई। तब पुंज सही उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा, आभा निकलने लगे, क्योंकि बिचारी इतने वर्षों से तपस्या करके खड़ी थी। भक्तों, जो लोग तपस्या करते हैं उनका तेज बहुत बढ़ता है। मेकअप करने से या ब्यूटी पार्लर में जाने से तेज नहीं बढ़ता है। यहाँ साफ साफ लिखा है अहल्या का तेज तपस्या करने से बड़ा है।
पर सद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई सावन प्रगट भई तप पुंज सहि देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर ग्रही देखत रघुनायक जन सुखदायक
अहल्या प्रकट हो चुकी है। दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी रह गई, भगवान के सामने झुक गई, प्रणाम किया। बोलना चाहती थी परंतु बिचारी कुछ बोल नहीं पाई। स्त्री का स्वभाव होता है, मन में बहुत हर्ष था, बहुत आनंद था, परंतु आनंद और हर्ष के कारण बिचारी कुछ बोल नहीं सकी। गोस्वामी जी लिखते हैं
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख
सामने खड़े हैं। एक अबला महिला के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। स्त्री का स्वभाव कुछ बोल नहीं पाई, गले से कोई वचन नहीं निकल रहा था, कुछ बोल नहीं सकती थी। क्या करे, अंत में आंखों से आंसू निकल गए। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, अबला तेरी यही कहानी, दिल में दर्द और आंखों में पानी। स्त्रियों के पास रोने के अलावा और कोई धन नहीं है। भगवान के सामने कुछ नहीं बोल सकी, अंत में आंखों से आंसू निकले।
धीरज मन दीना प्रभु कहूं चीना रघुपति कृपा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल अतुलितानी ज्ञान अगम्य रघुराई अति निर्मल
हृदय में धीरज धारण कर। धीरज धीरज धारण करके अहल्या मुख से कुछ बोलने जा रही थी। अहल्या भगवान को कहती है, प्रभु आप तो बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा भी समझ में नहीं आते हो, मैं अबला मैं नारी आपको क्या जान सकूं। मैं आपको समझ नहीं सकती हूँ, आपके बारे में जान नहीं सकती हूँ, परंतु मैं इतना जानती हूँ, मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया है, मेरे पति ने जो मुझे डांटा है, क्रोध किया है, श्राप दिया है, वे श्राप नहीं, वे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि यदि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया होता तो 100 जन्म तक भी आपका दर्शन नहीं होता। मेरे पति ने श्राप क्या दे दिया, प्रभु आपका दर्शन हो गया।
मुनि श्राप जो दीना अति बदीना, मुनि श्राप जो दीना अति बदीना, मुनि श्राप जो दीना अति बदीना, मुनि श्राप जो दीना अति बदीना। परम अनुग्रह में माना दे
कारण करुणा वरुणालय हो। आपने आज मुझ पर ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी, जो बड़े बड़े ध्यानी योगी ध्यान करते रह जाते हैं, हजारों हजारों जन्म तक योग करते हैं, आपके दर्शन की बात तो रही, आपके चरणों का ध्यान भी नहीं कर पाते। प्रभु आपके चरणों से जो जल निकला है, उस जल को जटा में धारण करके शिव जी अपने आप को धन्य मानते हैं, ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धारण करके अपने आप को धन्य मानते हैं प्रभु, परंतु वही साक्षात चरण आज मेरे सिर पर आ गया, आज मैं धन्य हो गई, आज मैं परम कृतार्थ हो गई। आप आज मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। इस प्रकार अहल्या भगवान से प्रार्थना करती हैं, और प्रार्थना करके भगवान श्री रामचंद्र अहल्या को अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, और शुद्ध भक्ति प्रदान करने के साथ साथ अहल्या को अपने पति के लोक में भेज देते हैं। शास्त्र का एक अकाट्य सिद्धांत है, देखिए गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहल्या के ऊपर, वह श्राप नहीं वरदान हो गया। एक स्त्री को चाहिए कि यदि पति जीवन में कभी डांटे, कभी क्रोध भी करे, तो उसे सह लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी स्त्री का हित छुपा हुआ होता है। प्रायः देखा गया है, कभी कभी पति या पुरुष अपनी पत्नी को डांटते हैं तो पत्नी उल्टा पुरुष को डांटती है, ये ठीक नहीं है। भले उस समय वह पति की डांट समझ में ना आए, परंतु भविष्य में यह बहुत अच्छा हो सकता है। और अहल्या अपने पति के वचनों को सुनने के कारण और भगवान की भक्ति करने के कारण भगवान के आशीर्वाद से अपने पति के लोक में चली गई। ये शास्त्र का सिद्धांत है, यदि कोई पति पत्नी हो और पति और पत्नी एक साथ भक्ति करते हैं, तो मरने के बाद भी भगवान के धाम में उसे एक साथ सेवा मिलती है।
एही भांति सीधारी गौतम नारी, 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 बार बार हरि चरण परी जो पति लोक या
शोकन सावन प्रगट भईकुंद
तो इस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से अपने पति के लोक में को प्राप्त हुई, शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुई। भक्तों, यह कथा मैंने सहस्त्र अक्षय इंद्र के नाम से यह कथा याद आ गई। परीक्षित महाराज का प्रश्न है, वित्रासुर इतना बड़ा पापी होने के बाद भी भगवान की भक्ति में अचानक इमीडिएट क्यों लग गया? हम भी पापी हैं, हम भी तमोगुणी हैं, हम भी रजोगुण में फंसे हुए हैं और हमें भी इमीडिएट भक्ति में लगना है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के उत्तर को सुनना बहुत आवश्यक है। परीक्षित का प्रश्न पूछने पर सुखदेव गोस्वामी अब बोलना प्रारंभ करते हैं। परीक्षितोथ संप्रश्न भगवान बादरायणी निशम्य शब्द दानस्य प्रतिनंद्य वचो ब्रवीत। सुखदेव परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा, यह प्रश्न कैसा था? श्रद्धा युक्त। कहते श्रद्ध दानस्य निशम्य। परीक्षित महाराज को पूर्ण श्रद्धा थी सुखदेव गोस्वामी के ऊपर। श्रद्धा का अर्थ होता है श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। ऐसी श्रद्धा ऐसी निष्ठा कि यह कथा सुनकर भगवान की भक्ति करके ही मैं परम गति को प्राप्त होऊंगा, इसे श्रद्धा कहा जाता है। परीक्षित महाराज के हृदय में श्रद्धा थी, श्रद्धा से उन्होंने यह प्रश्न पूछा और सुखदेव गोस्वामी भगवान बादरायणी सर्व समर्थ थे। तो परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी वचो अब्रवीत इस प्रकार से बोलने लगे। सुखदेव गोस्वामी क्या बोले? शिशु कुवाच शुणु वही तो शुणु वही तो राजन इतिहासमिम यथा श्रुतम द्वैपायन मुखा नारदा देवनायपि। हे राजन, सुदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, वित्रासुर की मति अचानक इमीडिएट भगवान में क्यों लगी? यदि आपको यह सुनना है तो इसके लिए आपको एक इतिहास सुनना होगा। मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाने जा रहा हूं, राजन इतिहासम इमम यथा। इसका अर्थ यह है, मैं तुम्हें जो सुनाने जा रहा हूं वह इतिहास है। इतिहास का अर्थ होता है बीती हुई सत्य घटना, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। श्रुणुवा वही तो, तुम ध्यान देकर सुनो, क्योंकि यह इतिहास जो है बहुत आश्चर्यमय इतिहास है। प्रश्न होता है कि क्या परीक्षित महाराज ध्यान से नहीं सुन रहे थे? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ध्यान से सुनो। सुखदेव गोस्वामी का भाव यह है कि यह कथा ऐसी है, यदि थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा तो इस कथा पर विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि आगे चलकर इस कथा के जो मुख्य पात्र होंगे, उस मुख्य पात्र राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नी होगी। और यदि इस कथा को ध्यान से नहीं सुनोगे तो इस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। इसलिए परीक्षित, सबसे पहली बात सुखदेव गोस्वामी के मुख से क्या निकली? शुणुवा वही तो राजन। ये राजन ध्यान से सुनो, श्रद्धा से सुनो, विश्वास से सुनो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास है। और यह इतिहास श्रुतो द्वैपायनम मुखात नारदात देवलात अपि। हे परीक्षित, जो इतिहास मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, यह इतिहास मैंने भगवान वेदव्यास जी से सुना था। केवल व्यास जी से नहीं, यही इतिहास मैंने नारद जी से भी सुना था, यही इतिहास मैंने देवल ऋषि से भी सुना था। ये जो कथा मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, ये एक बार नहीं, ये कई बार मैं सुन चुका हूं, कई लोगों से सुन चुका हूं। इसलिए इस पर अश्रद्धा मत करना, अपना विश्वास मत हटा लेना। इससे और एक सिद्धांत प्रकट होता है। सुखदेव गोस्वामी कथा कब कर रहे हैं? जब उन्होंने एक बार एक बात कई बार सुनी। इस संसार में व्यक्ति वक्ता तब बन सकता है जब वह एक चीज को 10 बार सुने। वक्ता बनने की योग्यता, सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े वक्ता है, और सबसे बड़े वक्ता बनने की योग्यता क्या है? सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं, श्रुतो दिवे पायन मुखात। मैंने बार बार इस कथा को सुना है, इसलिए मैं आपको कहने में समर्थ हूं। और बहुत लोगों से सुना है, बड़े बड़े लोगों से सुना है। परीक्षित महाराज ने कहा, तो बताइए कथा क्या है, जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि समय बहुत बीत रहा है, 9:30 बजने आ गया है और कथा शुरू नहीं हुई। जल्दी बताइए, हम भी जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं। आसित राजा सार्वभौमम शूर सेनेशु वै नृप चित्र केतु इति ख्यातो अस्यासीत काम धुग्महि। कहते हैं, हे नृप, हे राजन, आचार्य गण टीकाओं में लिखते हैं कि नृप परीक्षित को इसलिए कह रहे हैं कि आप भी राजा हो, और आप जैसा ही एक राजा था। एक समय की बात, एक राजा था सूर सेनेशु। कहां का राजा था? कहते हैं सूरसेन देश का एक राजा था। सूरसेन देश अर्थात आज का अलीगढ़, भरतपुर, मथुरा, खाखासर इत्यादि, ये जो गांव है, उत्तर प्रदेश का यह राजा था। सूरसेन देश का यह राजा सार्वभौम, सार्वभौम अर्थात सर्वभौम, जिसकी यह सर्वभूमि जिसके अंडर में थी, चक्रवर्ती सम्राट था और राजा था। अच्छा, इसका नाम क्या था? कहते हैं चित्रकेतु इति ख्यात। सूरसेन देश का यह राजा था और इसका नाम था चित्रकेतु। और ऐसा राज करता था, ऐसा राज करता था, अस्यासीत काम धुग्महि, पृथ्वी से किसानों को जो भी चाहिए था वो मिल जाता था। जिस काल में जो भी फसल पकानी हो वह सारी पकल उसे मिल जाती थी फसल। क्यों? क्योंकि राजा ऐसा था। वास्तव में यह पृथ्वी देवी शासन के ऊपर डिपेंड करती है। यदि राजा अच्छा हो तो पृथ्वी 10 गुना अन्न दे सकती है, और यदि राजा अच्छे न हो तो पृथ्वी कुछ नहीं दे सकती। श्रीमद् भागवत में अंग के पुत्र वेण की कथा आती है। वेण एक ऐसा पुत्र था और उसे राजा बनाया गया, और इतना पाप किया पृथ्वी अन्न देना बंद कर दी। नेता और राजा यदि केवल पाप ही करते हैं तो पृथ्वी अन्न देना बंद कर देती है। आज भी यही चल रहा है। पृथ्वी से अन्न मिलना इसलिए बंद हुआ है क्योंकि राजा अच्छे नहीं है। जिस देश के राजा अच्छे होते हैं वे पृथ्वी 12 महीने अन्न देती है। पृथ्वी अन्न, बहुत सारा अन्न दे रही थी, सारी प्रजा सुखी थी। उस राजा के बारे में बता रहे हैं, कहते हैं तस्य भार्या सहस्त्राणाम सहस्त्राणी दशा भवन। सबको श्लोक के सामने एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि विश्वास नहीं होगा। कहते तस्य माने उस चित्रकेतु राजा की भार्या पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? कहते सहस्त्राणाम सहस्त्राणी दशा भवन, सहस्त्र सहस्त्र दश, संस्कृत में, हिंदी में इसको 1 करोड़ कहा जाता है। ऐसा सार्वभौम चक्रवर्ती राजा था जिसकी 1 करोड़ पत्नी थी। 1 करोड़ पहले ही कह चुके हैं कि परीक्षित, मैं केवल काल्पनिक घटना नहीं कह रहा हूं, आसीत नारद वेदव्यास जी ये सब के मुख से मैंने बार बार सुना है। ऐसा नहीं कि एक बार सुनकर आया हूं बता रहा हूं इसलिए 1-0 में मिस्टेक हो रही है, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट कह रहा हूं कि एक करोड़ पत्नी थी उनकी, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि एक करोड़ पत्नी होने के बाद भी संतानिक कसच्यापि नृपो न लेभे तासु संतति। एक करोड़ पत्नी होने के बाद भी एक भी संतान नहीं थी। यही इस संसार का नियम है। राजा चित्रकेतु के पास सब कुछ था, आगे आएगा, धन की कोई कमी नहीं थी। आगे कहते हैं, रूप दार्य वयो जन्म, इतना सुंदर रूप था। अरे भाई, रूप होगा तभी तो एक करोड़ विवाह हुआ होगा। आज तो एक विवाह करने के लिए तीन तीन पांच पांच साल निकल जाते हैं, और फिर भी कैसी पत्नी को ढूंढ कर लाते हैं, देखने का मन भी नहीं होता है। एक पत्नी भी मिलना मुश्किल है, आज एक करोड़ पत्नी मिली। कारण क्या? रूप। रूप था उनका, सुंदर थे। रूप दार्य, उनमें बहुत सारे गुण थे, उदार्य, उदारता इत्यादि। वयो, और उनकी उम्र भी बहुत अच्छी, बूढ़े भी नहीं थे, बिल्कुल कुमार अवस्था के थे, जवान थे। और जवान व्यक्ति स्वाभाविक सुंदर होता है। और जन्म, बहुत बड़े कुल में उनका जन्म हुआ था, ऐसा नहीं कि शूद्र परिवार में, बहुत अच्छे सुसंस्कृत घर में उनका जन्म था। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की गाड़ी, बंगले, धन की कोई कमी नहीं थी, श्रिया आदि भी, धन, कपड़े पहनने के लिए, गहने इत्यादि, कोई किसी भी बात की कमी नहीं थी। संपन्नस्य गुणे सर्वे, सभी प्रकार के गुण इस राजा में उपस्थित थे। परंतु चिंत्या वंध्या पतेर भूत, परंतु वे चिंता से मग्न थे। क्यों? वे समर्थ, पुत्र उत्पन्न करने में चित्रकेतु समर्थ थे, चित्रकेतु में कोई कमी नहीं थी, परंतु वे जिस स्त्री के साथ विवाह करते थे वे स्त्री असमर्थ थी, इसलिए बहुत चिंतित थे। इस भौतिक जगत का नियम है कि व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, संसार में देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति बहुत धनी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और जो चाहे वो भोजन उनके सामने उपस्थित है, परंतु बेचारे को डायबिटीज है। जिसके पास खाना है, भोजन है, धन है, उसी को डायबिटीज है, और जो भूखे मर रहे हैं उसके पास कुछ भोजन नहीं है। जिसके पास पैसे हैं उसके पास भूख नहीं है, भूख लगने की दवाई पीते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर दवाई दो ताकि हमें भूख लगे। जिसके पास पैसे हैं उसको भूख नहीं है, और जिसको भूख है उसके पास पैसे नहीं है। समाज में इस भौतिक जगत का नियम है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। चित्र केतु, क्या कमी थी इनके पास? सब कुछ था, रूप था, धन था, ज्ञान था, गुण था, साम्राज्य था, सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे, एक करोड़ पत्नी, एक खाली एक बार कह दे मुझे पानी पीना है, एक करोड़ ग्लास सामने उपस्थित होता। आज तो एक करोड़ बार कहने के बाद भी एक बार ग्लास नहीं आता है। इतने सुखी थे चित्रकेतु राजा, परंतु एक कमी थी। कमी क्या थी? संतान नहीं थी। और संतान नहीं होने के कारण न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो वाम लोचना सार्वभौमस्य भूयेश्च भवन अप्रीति हेतव। चित्रकेतु के पास सब कुछ था, केवल एक कमी थी, संतान पुत्र नहीं था। एक कमी होने के कारण सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल एक कमी होने के कारण ये बाकी जो कुछ भी था उसका आनंद नहीं उठा सकते थे। धन था, परंतु धन का आनंद उसे नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि एक कमी है। प्राय साधारण वस्तु में भी हम देख सकते हैं, मान लीजिए आप भोजन करने बैठे हैं, रोटी है, दो सब्जी है, दाल है, भात है, खीर है, सब कुछ है, परंतु पापड़ नहीं है। यदि किसी को पापड़ खाने का शौक है और कह दे पापड़ लाओ, और पापड़ यदि न मिले, यद्यपि खाने के लिए बहुत कुछ है, दो सब्जी है, खीर है, दाल भात सब कुछ है, परंतु पापड़ नहीं है, तो केवल पापड़ नहीं होने के कारण ये पूरे भोजन का आनंद नहीं ले सकता। संसार में व्यक्ति एक वस्तु की कमी होने के कारण सभी वस्तु से विमुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे कमी उसके मन में है। यद्यपि वो भोजन करके पेट भर सकता है, चित्र केतु भी बिना संतान के जी सकता है, परंतु मन में यह कमी थी और बेचारा बहुत चिंतित होता रहता है, बहुत दुखी था। तो चिंतित राजा अब सुखदेव गोस्वामी कुछ प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा को मिलने के लिए एक साधु आ रहे हैं। साधु आ रहे हैं इसलिए कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। वहां त्रेता युग में राजा दशरथ वशिष्ठ जी से मिले, एक नहीं चार संतान प्राप्त हो गई। और यहां पर चित्रकेतु के वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्ये कदा तु भगवान अंगिरा भगवान ऋषि लोकान लोकान अनुचरण नेता अनुपाग इच्छ रिक्षया। तस्य एकदा, एक समय की बात, राजा बहुत चिंतित हुआ करता था, परंतु एक समय की बात अंगिरा नाम के ऋषि, ये अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र है, अंगिरा नाम के ऋषि घूमते 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 राजा चित्रकेतु के घर पर आ गए। क्या डोनेशन लेने के लिए आए? प्रश्न हो सकता है, क्योंकि आज के बुद्धि वाले तो यही सोचेंगे कि आ गए होंगे स्लिप बुक लेकर डोनेशन लेने के लिए। परंतु सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल सतर्क हैं, वे कह रहे हैं लोका अनुचरण, अंगिरा जी अपने लिए कभी नहीं घूमते हैं, लोक के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए वे घूमते हैं। लोकानुचरण, लोगों का उद्धार करने के लिए घूमते हैं। और घूमते घूमते एक दिन राजा के इस राज्य में चित्रकेतु के पास आए। एक आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं कि अंगिरा जी का चित्रकेतु के पास आना ही क्यों हुआ, और किसी के पास क्यों नहीं गए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यत इच्छया, यत का अर्थ होता है यत, यत भगवंतम, यत का अर्थ होता है भगवान। वे भगवान की इच्छा से चित्रकेतु के वहां आए, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना और कुछ नहीं हो सकता है। भगवान का योग, भगवान ने क्या पता अंगिरा जी के मन में यह बात बिठा दी और अंगिरा जी चलते चलते चित्रकेतु के पास पहुंचे। चित्रकेतु के राज्य में महल में पधारे हैं। चित्रकेतु ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थान अर्हनादि भी कृतातिथ्यमुपासित सुखासीनम समाहितम। अंगिरा जी को आते ही सबसे पहले उसकी पूजा की, पूजा करने के बाद आसन के ऊपर बिठाया, उनके चरणों को धोया और चरणों को धोकर उन्हें दंडवत प्रणाम इत्यादि करके अंगिरा जी को बहुत सुंदर भोजन प्रदान किया। और भोजन प्रदान करके अंगिरा जी आराम से आसन के ऊपर बैठे थे। महर्षि तद उपासीनम पश्यावनतम शितो प्रति पूज्य महाराज समाभाष्य इदम प्रवित। अंगिरा जी की पूजा करके राजा चित्रकेतु उपासीनम पश्यावनम शितो, राजा चित्रकेतु अंगिरा जी ऊपर आसन पर बैठे थे और राजा चित्रकेतु शीतो पृथ्वी के ऊपर नीचे बैठे। बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट हो रहा है। हमारे घर पर जब साधु संत का आगमन हो तब साधुओं को बहुत सुंदर उत्कृष्ट आसन देना चाहिए और हमें भूमि के ऊपर बैठना चाहिए। अरे हमारी बात छोड़ दीजिए, चित्रकेतु जो सार्वभौम सम्राट है वे पृथ्वी पर बैठ गए और अंगिरा जी को आसन पर बिठाए और प्रति पूज्य पूजा करने के बाद समाभाष्य इदम ब्रवीत। महाराज अंगिरा जी को चित्रकेतु इस प्रकार से कहने लगे। यहां पर सुखदेव गोस्वामी अंगिरा जी के लिए महाराज शब्द इस्तेमाल करते हैं। अंगिरा जी कैसे हैं? कहते महाराज। कहते चित्रकेतु मात्र राजा है परंतु अंगिरा जी महाराज। कभी कभी हमारे भी मन में प्रश्न होता है, जो राजा होते हैं उसके पास सेना होती है, नौकर चाकर गाड़ी बंगले सब कुछ होता है, और जो साधु संत होते हैं उसके पास तो कपड़े के अलावा और कुछ नहीं होता है, केवल लंगोटी पहनकर घूमते रहते हैं, तो उसे महाराज क्यों कहा जाता है? धन संपत्ति जिसके पास है उसे राजा, और जिसके पास कुछ नहीं है जो ऋषि बन गया है उसे महाराज कहते हैं। यहां पर बिल्कुल प्रकट चित्रकेतु को केवल राजा कह रहे हैं और अंगिरा जी को महाराज कह रहे हैं। महाराज कहने का तात्पर्य यही है कि वे राजा से भी ज्यादा सुखी थे। इसका अर्थ यही है कि राजा बनने से सुख मिल जाना ये संभव नहीं है। राजा के पास धन संपत्ति गाड़ी बंगले इत्यादि होते हैं तो धन संपत्ति से व्यक्ति सुखी नहीं होता है। वास्तव में सुखी व्यक्ति भगवान की भक्ति करके होता है। इसलिए देश के राजा को केवल राजा परंतु भक्ति करने वाले को महाराजा कहा जाता है। परीक्षित चित्रकेतु राजा आसन पर, अंगिरा जी को आसन पर बैठाए, राजा चित्रकेतु पृथ्वी पर बैठे हैं। तब स्वाभाविक अंगिरा जी ने चित्रकेतु को पूछा, अंगिरा वाच अपि तेना मयम स्वस्ति प्रकृति नाम तथात्मन यथा प्रकृति भीर्गुप्त पुमान राजा च सप्तवी। हे राजन, हे राजन, मुझे आपके मुख के ऊपर शोक दिख रहा है, चिंता दिख रही है, क्या आप दुखी तो नहीं हो? क्या आपके दुख का कारण आपकी प्रकृति तो नहीं है? अर्थात राजा होते हैं, राजा की सात प्रकार की प्रकृति होती है, जैसे पुरोहित, मंत्री, ब्राह्मण इत्यादि। यदि राजा के मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण ही ठीक ना हो तो राजा कभी सुखी नहीं हो सकता है। देखिए यहां पर भी बहुत सुंदर सिद्धांत है। अंगिरा जी पूछ रहे हैं कि आपको मंत्रणा देने वाले, आपको सलाह देने वाले सलाहकार तो अच्छे हैं ना, क्योंकि यदि सलाहकार अच्छे नहीं है तो जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है, ये सिद्धांत है। इसलिए हमें सलाह ऐसे व्यक्ति की लेनी चाहिए जो शास्त्र को जानता हो। क्या सलाहकार तो ठीक है? क्योंकि जिसका सलाहकार अच्छे नहीं होते हैं उसे आपकी तरह दुखी होते हैं। आत्मानं प्रकृति श्वद्धा निधाय श्रेय आत्मयात राग्य तथा। हरे कृष्णा, हरे
हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
राजा तथा प्रकृतयो नर देव हिताधय। राजा तो सबका कल्याण करने के लिए होता है और तुम स्वयं दुखी हो। अरे राजा का काम तो सबको सुखी करना होता है, आप स्वयं दुखी हो। अपि दारा प्रजायात्मा, आपकी पत्नी तो आपके वश में है ना, क्योंकि यदि किसी की पत्नी वश में न हो तो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। अंगिरा जी ने देखा कि बेचारा बहुत दुखी है तो लगता है पत्नी वश में नहीं है, और इसकी तो 1 करोड़ है। इस संसार में 1 पत्नी भी यदि वश में न हो तो बेचारे पुरुष का शरीर सिर झुक जाता है, चिंतित हो जाता है, इसकी 1 करोड़ है। इसका अपि दारा प्रजा मात्या, क्या आपकी दारा, आपकी पत्नी तो अपने वश में है ना। भृत्या शरेवत मंत्रिण, आपके सेवक तो आपके वश में है ना, क्योंकि यदि सेवक वश में न हो तो व्यक्ति बहुत क्रोध में रहता है। पोरा जान पदा भूपा आत्मजा वश वर्ती न। और अंगिरा जी अब कह रहे हैं कि आपके पुत्र अपने वश में तो है ना। देखिए सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है कि इसका कोई पुत्र नहीं है और पुत्र के लिए दुखी है, परंतु फिर भी कभी कभी ऋषि मुनि भी मजाक कर देते हैं, कहते हैं आत्मजा आपके पुत्र भी आपके वश में तो है ना। चित्र के तो और दुखी, एक तो पुत्र के कारण दुखी, ऊपर से इसने याद करा दिया, चित्र के तो बेचारा और दुखी हो गया। और कहा कि देखो राजन, ये सब कुछ होने के बाद भी यदि किसी का मन वश में हो, मान लो पत्नी वश में न हो, पुत्र वश में न हो, मंत्री सलाहकार कोई वश में न हो, कोई सुनता न हो, परंतु केवल मन वश में हो, तो व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। और सब कुछ वश में होने के बाद भी यदि मन वश में न हो तो व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या आपका मन तो वश में है ना? आत्मा न प्रियतेन आत्मा परत स्वत एववा लक्ष्ये लब्ध कामम वा त्वाम चिंतया शबलमुखम। आपका मुंह देखकर मुझे लग रहा है कि आप कई दिनों से चिंता में हो। ये सत्य बात है। फेस इज इंडेक्स ऑफ हार्ट। ये जो हमारा चेहरा है ये हमारे हृदय की बात बताता है। पता चल जाता है व्यक्ति कितना दुखी है, कितना सुखी है, कितना क्रोधी है। कहते हैं आपके मुख से मुझे लग रहा है कि आप कुछ दुखी हो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं विकल्पितो राजन विदुषा मुनि नापिस प्रशयावत नोभ्याह प्रजा कामस्ततो मुनि। इस प्रकार से अंगिरा जी ने कहा कि राजन बताओ आपको क्या दुख है, आपके जीवन में क्या कमी है, क्या दुख है आप बताओ। तब चित्रकेतु वाच चित्रकेतु कहते हैं भगवान किम न विदितम। प्रभु क्यों मजाक कर रहे हैं? किम तम न विदितम, क्या आप नहीं जानते हो मुझे क्या दुख है? अरे तपो योग समाधि भी योगी नाम ध्वस्त पापा नाम बहिर अंत शरीर इशु। जो बहुत बहुत भक्ति करते हैं तब योग समाधि और ध्यान करते हैं वे तो दुनिया के सभी लोगों के अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है सब कुछ जान लेते हैं। क्या आपको नहीं पता है मैं क्यों दुखी हूं? ये सत्य बात है। जब व्यक्ति भक्ति करता है और भक्ति कर करके उच्च सीमा पर पहुंच जाता है तब वे भविष्य को देखने लगता है कि व्यक्ति क्यों दुखी होगा, क्या है क्या नहीं। चित्रकेतु ने कहा क्या आप नहीं जानते? फिर भी तथापि पृच्छतो गुरुयाम ब्रह्मन आत्मनि चिंतितम भवतो विदुषश्चापि चोदि तत् अनुज्ञया। चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि हे प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो क्योंकि आप तो बहुत बड़े भक्त हो। और वास्तव में जो भक्त होते हैं भक्ति करके भविष्य को जान जाते हैं। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊं। बहुत कई वर्षों पहले की ये बात है। एक समय की बात, हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य है जो संन्यास धारण किए हैं। उन्होंने अचानक एक दिन सूरत में उनकी एक शिष्या रहती थी और उनकी शिष्या एक स्कूल में नौकरी करती थी। एक दिन की बात, वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गई और उनके गुरु विदेश में रहते थे, विदेशी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो एक दिन अचानक ये स्कूल में सभी विद्यार्थी को पढ़ा रही थी और गुरुजी ने विदेश से वहां डायरेक्ट स्कूल में फोन किया और स्कूल में फोन करके अपनी शिष्या को कहा कि आप एक काम करो, तुरंत अभी इसी वक्त ट्रेन पकड़कर वृंदावन चली जाओ। तो समझ में नहीं आया अभी इसी वक्त स्कूल छोड़कर नौकरी छोड़कर। हां गुरुदेव की आज्ञा, कहा मेरी बात मानो, तुरंत अभी इसी वक्त वृंदावन चली जाओ। गुरुजी की आज्ञा का पालन करके तुरंत उसी वक्त उन्होंने ट्रेन पकड़कर वृंदावन गई। ये सत्य घटना है। उस दिन के दूसरे दिन सूरत में उसी स्कूल से प्लेग का रोग प्रारंभ हुआ और उसी स्कूल के हजारों बच्चे वहां मर गए। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां विदेश में बैठे हुए वह गुरु महाराज को पता चल गया कि यहां पर दूसरे दिन से बहुत भयावह कुछ कार्य होने वाला है, इसलिए अपनी शिष्या को बचाया। और भी बहुत सारे दृष्टांत हैं। हमारा यह जो जुहू मंदिर आप सब लोग जानते होंगे, श्री राधा रास बिहारी मंदिर, जब यह मंदिर बंद रहा था तब हमारे प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी कि आप सब लोग डायरेक्ट पिलर बनाकर मंदिर का काम शुरू करो। परंतु सब लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि समुद्र के बाजू में यह जमीन है और समुद्र के बाजू में होने के कारण बहुत नरम जमीन होती है। तो सब लोगों ने सोचा नहीं नहीं, हमें पहले चेक करना होगा कि कितनी नरम जमीन है, क्या है, और बहुत बड़ा लंबा पिलर डालना होगा, तब जाकर इतना मंदिर बन सकता है। प्रभुपाद जी ने दूसरी बार कहा कि कोई लंबा पिलर डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जैसे नॉर्मल काम करते हो वैसे शुरू कर दो और जल्दी मंदिर बनाओ। फिर भी जो आर्किटेक्ट इत्यादि थे उन्होंने विश्वास नहीं किया, परंतु जब वे पिलर बनाने गए और चेक करने गए तो पता चला कि उसी जगह पर बहुत बड़ा नीचे पहाड़ है, पत्थर का पहाड़, और इतनी कड़क जमीन है जितनी नॉर्मल जमीन भी नहीं हो सकती। और बिल्कुल दूसरे दिन से वह काम प्रारंभ हुआ। भक्ति करने से भविष्य की बात पता चल जाती है, अंतर बहिर। चित्रकेतु राजा कहते हैं कि अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पता चल जाता है। एक समय की बात, हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका में बैठे थे और वहां बैठे बैठे वे प्लान बना रहे थे कि हम लोग मायापुर में मंदिर बनाएंगे। आज बहुत सुंदर मायापुर में मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है परंतु टेम्पररी है। आप कल्पना कीजिए परमानेंट मंदिर कितना बड़ा होगा। तो बहुत वर्ष पहले जब वे प्लान बना रहे थे कि इतना सुंदर मंदिर बनाना है, इतने बड़े बड़े विग्रह रखने हैं, तब किसी ने पूछ दिया कि प्रभुपाद जी आप इतना मंदिर बना रहे हो परंतु इस मंदिर में पूजा और आरती कौन करेगा। उसी समय ही दो व्यक्ति शूट बूट टाई पहनकर बहुत बड़े ऑफिसर चलते हुए प्रभुपाद जी की ओर आ रहे थे। प्रभुपाद जी इसके पहले उस व्यक्ति से कभी नहीं मिले थे, न तो उसके बारे में जानते थे। यहां पर पूछा कि उस मायापुर मंदिर में पुजारी इत्यादि सेवा कौन करेगा। प्रभुपाद जी ने कहा देखो वो दोनों शूट बूट टाई पहनकर आ रहे हैं, ये दोनों मायापुर मंदिर के पुजारी बनेंगे। ये दोनों धीरे धीरे चलते हुए यहां पर आए, दोनों जुड़वे भाई थे, दोनों जुड़वे भाई दोनों साथ में आए, आकर 10 मिनट प्रभुपाद जी के पास बैठे, दोनों भक्त बन गए। आज की तारीख में भी आप जाकर देखेंगे जननिवास प्रभु और पंकज अंग्री प्रभु, ये दोनों वही शुड़बुट टाई वाले आज भी वहां पर सेवा कर रहे हैं। ये है भविष्य दृष्टा। जो लोग भक्ति करते हैं, यहाँ पर श्लोक की सार्थकता है कि तपो योग समाधि भी विदितम न किम भगवान। तपो योग समाधि और भक्ति करने से व्यक्ति बहिर अंतर शरीर इशु, इस शरीर के अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है व्यक्ति सब कुछ जान सकता है। भक्ति होनी चाहिए। चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो परंतु फिर भी आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा है कि मैं कुछ बोलूं, तो मैं आने वाले कल आप सबको सुनाऊंगा। क्या कहा चित्रकेतु महाराज ने, हरे कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
यद्यपि अंगिरा ऋषि चित्रकेतु महाराज को भक्ति देने के लिए आए हैं, परंतु चित्रकेतु महाराज को पुत्र चाहिए। वे कहेंगे मुझे पुत्र दीजिए, कैसे भी करके पुत्र दीजिए। तो अंगिरा जी की कृपा से चित्रकेतु को पुत्र मिलेगा, परंतु एक पुत्र कितने लोगों की मति को घुमाएगा आने वाले दिनों में हम सब लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा।